ओम श्री हरि ही परिशिष्ट दु आचार्य विश्वनाथ एवं उनका ग्रंथ साहित्य दर्पण। विश्वनाथ का कुल। संस्कृत साहित्य में दो विश्वनाथ प्रसिद्ध हैं। एक है न्याय सिद्धांत मुक्तावली के प्रणेता विश्वनाथ जो नैयायिक हैं और दूसरे हैं विश्वनाथ कबीरा जिन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की है। दर्पणकार ने अपने और अपने कुल के संबंध में स्वयं बहुत कुछ परिचय दे रखा है। उन्होंने ऐसे कुल में जन्म लिया जो विद्या का धनी और कवि जगत में उच्च स्थान प्राप्त किए हुए था। इनके पिता चंद्रशेखर एक प्रकांड विद्वान और महाकवि थे जिनका इन्होंने साहित्य दर्पण की समाप्ति पर महाकवि मंडली के चंद्र रूप में इस तरह स्मरण किया है। श्री चंद्रशेखर महाकवि चंद्रशूनु श्री विश्वनाथ कविराज कृतम प्रबंधम। साथ ही अपने ग्रंथ में यथा ममता तपादानम रूप में पिता का उल्लेख करते हुए इन्होंने उनके कितने ही पद्य उदाहरण में दे रखे हैं, जैसे मुग्धनायिका ब्रकेट प्रथमावतीर्ण यौवना ब्रकेट बंद मध्यस्य प्रतिमा नमेति जगनम वृक्षो जयोर्मदंता दुरम यात्यो दुरम चरो मलतिका नेत्रार्जवम धावती कंदर्प परिवेक्ष नूतनम मनोराज्य विक्षिप्तम क्षणादं अंगिलिव परस्परम विदधते निर्लुंठनम सुश्रभुवः। कलहांतरिका नायिका का नोचाष्टुश्रवण कृतम यह उदाहरण भी इन्होंने पिता का ही दिया है। प्रवासी पति का चिंता भी मितम मनः उदाहरण भी पिता का ही है। छेकानुप्रास का उदाहरण इन्होंने अपने पिता को का बनाया हुआ इस प्रकार दिया है आदाय बकुल गंधानंदनी कुर्वन पदे पदे अभ्रमभरान अयम इति मंद मंदम कावेरी वरीपान पावन पवन। विश्वनाथ ने अपने द्वारा प्रणीत दो ग्रंथ पुष्पमाला और भासारणव का उल्लेख अपने साहित्य दर्पण में कर रखा है। पुष्पमाला एक नाट्य रचना है जिसके संबंध में उन्होंने छठे परिच्छेद में नाटक प्रकरण में इस प्रकार लिखा है द्वादश पदानांदी यथा मम तात पदानाम पुष्पमालायाम शिरसि धृत सुरापगे। इसमें विदित होता है कि इनके पिता महाकवि उन्होंने के साथ साथ नाट्यकार भी थे। उनके भासारणव के उल्लेख इन्होंने छठे परिच्छेद में नाटक भाषाओं के प्रकरण में इस तरह कर रखा है भाषा लक्षणानि यथा मम तात पदानाम भासारणवे। प्रवासानंतर संभोग श्रृंगार का नायक नायिका के मध्य मिश्रित भाषा में हुए वार्तालाप के रूप में इनके पिता का बनाया हुआ उदाहरण देखिए क्षेमं ते ननु पक्षमलाक्षी किसग्नं क्षेमं मंदगम्भणीयं एतादृकीरीशताकुतः तूह पुंडो पुठं शरीरं जदु केनाहं पृथुलं प्रिये पणैर्निदेहस्य समेलता न ततः शुभ्रु न कापि मे जयि इदं क्षेमं कुदोह पुक्षसि। इसमें सिद्ध होता है कि इनके पिता चंद्रशेखर प्राकृत भाषाओं के भी प्रकांड विद्वान थे। विश्वनाथ ने तृतीय परिच्छेद में रस को काव्य का प्राण तत्व बताते हुए अपने दृढ़ पर पितामह नारायण का इस प्रकार उल्लेख किया है तत्प्राणक्तम चास्मद वृद्ध पर पितामह सुहृदय गोष्ठी गरिष्ठ कवि पंडित मुख्य श्रीमन्नारायण पादैरुक्तम। वृद्ध पर पितामह के सुहृदय गोष्ठी गरिष्ठ कवि पंडित मुख्य विष्णु विशेषण से नारायण का विपुल पांडित्य और काव्य नई पुण्य प्रमाणित हो जाता है। डॉक्टर सत्यव्रत सिंह ने काव्य प्रकाश पर विश्वनाथ रचित काव्य प्रकाश दर्पण नामक टीका का उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि नारायण उनके पितामह थे, किंतु हमारे विचार से पितामह और वृद्ध पर पितामह के मध्य एक दम दो पीढ़ियों का अंतर एक विसंगति ही है, अथवा हो सकता है कि पितामह और पर पितामह का नाम एक ही हो। विश्वनाथ ने सप्तम परिच्छेद में अपने पितामह के अनुज को इस प्रकार स्मरण किया है अस्मत पिता महानुज कवि पंडित मुख्य श्री चंडीदास पदानाम तू खंडर श्याम नाम नायदाहु। विश्वनाथ का देश काल। विश्वनाथ ने ग्रंथ के अंत में अपने पिता का और अपना परिचय संधि ग्रह विग्रह का महापात्र के रूप में दिया है, जिससे मालूम होता है कि ये किसी राजा के मंत्री थे जो राज्य का संधि विग्रह विभाग संभाले हुए थे। इतिहासानुसार ब्राह्मण पहले मंत्री रहते ही थे, इन्हें यह पद कुल क्रम से प्राप्त हुआ था। अब हमें यह देखना है कि यह कौन सा और कहाँ का राजा था जिसके यह मंत्री रहे। जैसे हम आगे बताएंगे, विश्वनाथ जी की कृतियों में से एक प्रशस्त रत्नावली भी है जिसमें कलिंगाधिपति निरीप सिंह की स्तुति की गई है। साहित्य दर्पण में ब्याज स्तुति अलंकार का उदाहरण इदम मम कहकर इन्होंने यह कहा दिया है। स्तन युग मुक्ता भरणाह कंटक लितांग यस्तयो देव त्वयि कुपित्ते अपि प्रागीव विश्वसता विच्छ स्त्रियो जातः। इसी प्रकार परम्पराजित रूपक का यह उदाहरण दिया है। आ हवे जगदराज मंडलरा हवे श्री नृसिंह महीपाल सत्यो अस्तुत वबाहवे। मालूम होता है कि ये पद्य इन्होंने अपनी प्रशस्ति रत्नावली के लिए है। डॉक्टर सत्यव्रत सिंह के अनुसार साहित्य दर्पण पर इनके पुत्र अनंत दास द्वारा कृत लोचन टीका में यह उल्लेख मिलता है, यथा मम तात पदा नाम विजय नरसिंह। इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने अपने आश्रयदाता कलिंग नरेश का नाम भ्रमर करने हेतु नरसिंह विजय काव्य लिखा है। इस तरह विश्वनाथ का कलिंग देशवासी होना मिश्रित हो जाता है। साहित्य दर्पण में आए हुए कलिंग साहसिक राजा गोरेन्द्र कष्टकम शोधयति इत्यादि प्रयोग भी इसी बात का और संकेत करती है, क्योंकि गौर देश कलिंग का प्रत्याशन शत्रु देश है। जहाँ तक विश्वनाथ की स्थिति काल का संबंध है, वह निश्चित प्रायः ही इन्होंने प्रतिवस्तुपमा अलंकार का उदाहरण नैषध्य काव्य में इस तरह उद्धृत हुआ है। धन्यासी वैदर्भी गुणैरुदारैरया समाकृष्टयत नैषध्योऽपि इतः स्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया यदब्धिमप्योतराली करोति। इसी तरह व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण भी नैषध से ही दिया है। हनुमदार्धैर्य ससा मया पुनर्विषम हसयदु तपथः सिद्धि कृतः। नैषध का श्री हर्ष की स्थिति काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, जिससे सिद्ध होता है कि दर्पणकार श्री हर्ष के बाद में हुए हैं। इसी प्रकार साहित्य दर्पण में किसी कवि का बनाया स्रस्फुट गुणीभूत व्यंग का उदाहरण यह आया हुआ है। संभव सर्वस्व हरणम विग्रहे प्राण निग्रह अला बबुद्दीन नृपतौ न संधिर्न न च विग्रह। अलाउद्दीन को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का आदि संस्थापक माना गया है। इतिहासानुसार इसका शासन काल 1286 से 1316 ईस्वी है। इससे भी प्रसिद्ध होता है कि विश्वनाथ कविराज का स्थिति काल 14वीं सदी के पूर्वार्ध का बाद रहा है। 15वीं शताब्दी में गोविंद ठाकुर ने मम्मट के काव्य प्रकाश पर प्रदीप नामक टीका लिखी है, जिसमें उसने विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित बातों का उल्लेख किया है। इसी समय के बाद कितने ही अन्य अलंकार शास्त्रियों ने साहित्य दर्पण का उल्लेख किया है। इससे दर्पणकार का समय 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ठहरता है। विश्वनाथ का व्यक्तित्व साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में के समाप्ति में विश्वनाथ कविराज ने अपनी ही श्री लेखनी से स्वयं अपने व्यक्तित्व का चित्र इस तरह खींच रखा है। श्रीमन्नारायणारविन्द ध्रुवत व्रत साहित्य वर्णा कर्णधार ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य कविसूक्ति रत्नाकराष्टा दशमा भाषवार विलासिनी भुजंग संधि विग्रहिक पात्र विश्वनाथ कविराज कृतौ साहित्य दर्पण काव्य स्वरूप निरूपण नाम प्रथम परिच्छेद। इससे स्पष्ट है कि श्री नारायण के परम भक्त साहित्य दर्पण के कर्णधार ध्वनि प्रस्थापना के परमाचार्य कवि सूक्तियों के रत्नाकर 18 भाषाओं के मर्मज्ञ तथा राज्य का संधि विग्रह विभाग संभालने वाले मंत्री थे। ये सभी बातें इन्हें कुल क्रम से दायक रूप में प्राप्त होती है। इनका कविक्रम ध्वनियों का ध्वनन सुक्ति की रचना चातुरी एवं विविध भाषा विज्ञता साहित्य दर्पण में अपनी अनेक कृतियों में से उदाहरण रूप में उद्धृत पद्यों का और संदर्भों में स्पष्ट हो जाती है। हमारी गणना के अनुसार उन्होंने साहित्य दर्पण में लगभग 40 स्थलों में इदम मम कहकर अपनी तत् काव्य अथवा नाटक कृतियों में उद्धत या स्वरचित उदाहरण दे रखे हैं, जिससे सिद्ध हो जाता है कि इनका क्या काव्य और क्या नाट्य दोनों में कितना पूरा अधिकार है। कवियों ने यह कालिदास आदि की तरह मुख्यतः श्रृंगारी कवि हैं, जैसे इनके उदाहरणों में से सिद्ध होता है। साहित्य दर्पण में इनके कितने ही मार्मिक श्रृंगार चित्र देखने को मिल सक जाते हैं। विस्तार के भय से हम यहाँ कतिपय चित्र ही देना चाहेंगे, जैसे प्रथमावतरण यौवना मुग्धा नायिका बते साल समंथरम भुवि पदम निर्याति नान्त पुरातः स्नोहांसं हसति छाकलयते हिस्त्रयणां कामपि पशिद्ध भागवद्वीर विक्रमवश पृष्ठम् मनाद्भासते संभ्रष्ट भंगेरमौदीक्षितिम् प्रियकथाम् उल्लाप्यन्ति सखिम्। दीपिका लंकार के प्रसंग में बिरहिणी दूरं समागतवती त्वयि जिदनार्थे भिन्ना मनोभव भेज वसरे रेण तपस्विनी सा उतिष्ठति स्वपिति वासगृहं तदीय माया वही याति हसति स्वसीति क्षणेन। इसी तरह नाग सौंदर्य भरा स्वाभाविक मधुर प्रकृति चित्र भी उद्दीपन विभाव के रूप में देखिए। लता कुंज कुंजन मद वदल पुंजम चपलनयम समालिंगनंग द्रुत अरन मन्नंग प्रबलयम मरुम नमंद मंदम दलित मरमद्विंद तरलयम रजोर वृंद वदन विदनम कर्तिरति मकरंद दिशि दिशि। वर्ण विषय जहाँ ओज पूर्ण और उद्धत होता है, वहाँ गौरी शैली अपना कर इसकी भाषा उत्कट ओजस्वी और शब्द आडम्बरी बन जाती है। इसके लिए इनका उद्धत शिव तांडव देखिए। मूर्धव्याधाय मानध्वनम दमन मरधुनी लोल कपोल जालो द्योतांभ छोददम भात प्रशब्ध सन्निभन भ चित्तन क्षत्र जालम ऊर्ध्वन्यस्तांग विदंड भ्री भ्रम प्रसोद्यत्र भ्रसवत् प्रयोगे भ्रांत ब्राह्मण खंडम प्रविरतरतु शिवम सांभवम तांडवम वह। जहाँ तक धर्म का प्रश्न है, विश्वनाथ वैष्णव संप्रदाय के अनुगामी थे, जैसे कि आसाम और कलिंग उड़ीसा के लोग प्राय हुआ करते हैं। प्रथम परिच्छेद की समाप्ति पर उन्होंने स्वयं को श्रीमन नारायण चरण अरविंद ध्रुवम व्रतम कहा है और ग्रंथ समाप्ति पर भी यावत प्रसन्नेन्दु निभान श्री नारायण श्यांगमलंग रोती कहकर विष्णु भगवान से अपने ग्रंथ के उज्जवल भविष्य हेतु अभ्यर्थना की है। काव्य नाटक और अनेक भाषाओं के ज्ञान के अतिरिक्त संधि विग्रहित राज्य मंत्री होने से सिद्ध होता है कि विश्वनाथ राजनीति शास्त्र के भी मर्मज्ञ रहे होंगे। राजा गौरेन्द्र कंटक शोधयति में इनकी राजनीति झलक रही है। विश्वनाथ की कृतियाँ। विश्वनाथ कविराज ने साहित्य दर्पण में अपनी कृतियों का स्वयं यत्न यत्र तत्र नामोल्लेख कर रखा है। जिन्होंने दो नाटिकाएं प्रभावती परिणय और चंद्रकला लिखी है। विधि नामक नाटक के अंगों में से असत प्रलाप का उदाहरण प्रभावती परिणय से इन्होंने इस प्रकार दिया है। तत्र आद्यम यथा मम प्रभावत्याम प्रधुम्नः प्रकट सहकार वल्लिम वलुक्य शानंदम ब्रकटम अहो कथम इहैव अलिकूल मंजुल केसी परिमल बहला रसावहा तन्वी केशवलय पेशलपाणि कोकिल भल्विक्षाणि भाषणी प्रियतमा मे। इसी तरह नाटक के अंगों में से विचार का चंद्रकला से यह उदाहरण दिया है। यथा मम चंद्रकलायाम राजा नून नियन मंतः पिहितम मदन पिकारः वर्तते यतः हसति परितोषरहितम निरीक्षम मारापि निरीक्षते किंचित साङ्ख्यामौदाहरणन्य समञ्जरसमुत्तरम् दत्ते। महाकाव्य के लक्षणों का निरूपण करके उदाहरण स्वरूप रघुवंश शिशुपाल वध और नैषधीय के साथ साथ इन्होंने अपने राघव विलास महाकाव्य का यथा मम राघव विलास आदि कहकर उल्लेख किया है। कुसुमालंकार के उदाहरण इदम मम कहकर दिया हुआ निम्नलिखित पद्य राघव विलास का ही लगता है। क्वनम तरुवल कभूषणम निरपलक्ष्मी क्व महेन्द्र वंदिता नियतम प्रतिकूल वर्तिनो वत धातुश्चरितम सुहृदयम चतुह समम। इन्होंने दो प्राकृत काव्य भी लिखे हैं जिनमें कुलायस्व चरित या उल्लेख का उल्लेख है। व्यभिचारी भाव में जड़ता के उदाहरण में इन्होंने इस प्रकार किया है, यथा मम कुलयास्व चरिते प्रकृत काव्य कणवर्य तम जुवज्जुअलम अणोड़म वड़ी वज्ज सजल मंथर दीक्षिम आलेखोपियम वियविखणमेत तत्थम सडेयम भूषणम आलोक्यार्पितम नेव क्षणमात्रम तत्र स्थितम मुक्त संगमम। इनका दूसरा काव्य करम्भक जाति का काव्य है जो विविध भाषाओं में लिखा हुआ होता है। उदाहरण स्वरूप छठे परिच्छेद में 16 भाषाओं में लिखी हुई प्रशस्ति रत्नावली का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है, करकम्भम तु भाषार्धि विधि विद्या बिर्धि निर्मितम यथा मम षोडश भाषा मई प्रशस्ति रत्नावली। विश्वनाथ के पुत्र अनंत दास ने साहित्य दर्पण की स्वरचित टीका में निज पिता द्वारा प्रणीत श्री नृसिंह काव्य का भी उल्लेख कर रखा है। इस तरह दर्पणकार ने बनाए नाटक और काव्यों की संख्या कुल मिलाकर 6 हो जाती है। इनकी सूक्तियाँ भी ग्रंथों के यत्र तत्र बिखरी पड़ी हुई है। गद्य काव्य के संबंध में दर्पणकार ने वृत्तिगंधी उत्कली का प्रायः और चूर्णक गद्यों के नमूने अपने ही दे रखे हैं। इसमें अनुमान किया जा सकता है कि संभवतः इन्होंने कोई गद्य काव्य भी लिखा होगा, किंतु इन्होंने इसका कोई उल्लेख नहीं किया। उपरोक्त कृतियों के अतिरिक्त विश्वनाथ कविराज की 2 रचनाएं और भी है, एक है काव्य प्रकाश और दर्पणकार नामक टीका और दूसरी यह है साहित्य दर्पण जो साहित्य अथवा काव्य का लक्षण ग्रंथ है। इन 2 रचनाओं को छोड़कर दर्पणकार की पूर्वोक्त कृति सभी कृतियां संस्कृत के दुर्भाग्य में से काल कवलित हो गई है। साहित्य दर्पण हम कह चुके हैं कि साहित्य भी काव्य प्रकाश धन्यालोक रस गंगाधर आदि की तरह काव्य का लक्षण ग्रंथ है जिसे अलंकार शास्त्र कहा जाता है। इसके 10 परिच्छेद हैं जिनमें ग्रंथकार ने क्रमशः काव्य स्वरूप शब्द शक्ति रस ध्वनि व्यंजना काव्य भेद दोष रीति गुण और अलंकार इन 10 काव्य के निर्मापक तथा प्रतिबंधक तत्वों का विस्तार पूर्वक निरूपण करके सुदाहरण समन्वय कर रखा है। इसलिए इस ग्रंथ का सा अभिप्राय नाम साहित्य दर्पण पड़ा है। दर्पण शब्द को यहाँ दर्पण इव इस प्रकार सादृश्य परक लेकर प्रकाशक अर्थ में लक्षणिक समझिए। वैसे तो साहित्य दर्पण आजकल व्यापक अर्थ में लिया जा रहा है और उसके भीतर हम सभी तरह का लेखबद्ध वांग्मय समाहित कर देते हैं। क्या ज्योतिष, क्या दर्शन, क्या व्याकरण आदि विषय सभी आज साहित्य कहलाया जा रहा है, किंतु हमारे जिस साहित्य से संबंध है वहाँ इतना व्यापक नहीं। इसकी सीमा कवि वाणी से मानव जीवन की नाना प्रकार की रागात्मा अनुभूति अथवा संवेदनों अंतर्भाव और उनके संघर्षों की विमा मर्मस्पर्शी अभिव्यक्तियों सौंदर्य के सूक्ष्म वैविध्य भरे चित्रों द्वारा सुहृदयों के हृदयों को रसात्मक अविर्वचनीय आनंद प्रदान तथा जीवन अथवा समाज के उत्थान हेतु उदार आदर्शों की प्रतिष्ठापन तक ही रहती है। दूसरे शब्दों में साहित्य हृदय की भाषा का भावहीन लिखित वांग्मय है, शुष्क मस्तिष्क की भाषा का ही नहीं। जैसे विज्ञान आदि साहित्य होते हैं, साहित्य को ही हम काव्य कला कहेंगे। इसी बात को लक्ष्य करके भर्तृहरि ने बहुत समय पहले कह रखा है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। प्रसिद्ध जर्मन कवि गेटे ने भी भर्तृहरि के स्वर में स्वर मिलाकर कहा है, ही हु वाज नो ईयर फॉर पोएट्री इज अ बारबरियन बी ही हु मे, अर्थात जिसके कान काव्य सुनने में इच्छुक नहीं है वह बर्बर है चाहे वह कोई भी क्यों न हो। साहित्य शब्द की उत्पत्ति साहित्य को काव्य नाम देते समय प्रसिद्ध साहित्य शास्त्री कुंतक प्रसंग वर्ष इस शब्द की भी उत्पत्ति कर रखे हैं। शब्दार्थो साहित्य काव्यम अन्योनान अतिरिक्तम अत्मनोहारेण्य वस्थिति वक्रोक्ति जी अर्थात शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव द्वयोः संयुतयोः भावः आगे पीछे न हो, कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ संतुलित रूप में शब्द और अर्थ की सुंदर अवस्थिति काव्य है। काव्य शरीर रूप शब्द और अर्थ इन दोनों तत्वों में से किसी एक के प्रबल अथवा दुर्बल पड़ते ही कोमल काव्य कला एकदम दम तोड़ पड़े बैठेगी, किंतु हमारे विचार से इस व्युत्पत्ति को शब्द और अर्थ तक ही सीमित कर देना ठीक नहीं, वह एक देसी है। हमें काव्य में हृदय पक्ष के भावों का भी स्वभाव अपेक्षित है। कलाकार को कोई वस्तु देखकर अपने भीतर उठे भावों को इस तरह संप्रेषण अथवा अभिव्यक्ति देनी चाहिए कि वह पाठकों के अंत को छू दे और उसमें भी वैसा ही स्पंदन एवं भावोद्रेक उत्पन्न कर दे जो उस वस्तु को देखकर स्वयं कलाकार को हुआ हो। साथ ही जैसे कि दर्पणकार बताएंगे, सनिबद्ध वक्ता वो अपने हाथों चित्रित दुष्यंत शकुंतला आदि पात्रों के साथ पाठकों को अपने साधारणीकरण व्यापार द्वारा सह संवेदक अथवा एकाकार कर देने भी होता है। इसी से साहित्य अथवा काव्य की इति कर्तव्यता निहित होती है। काव्य का ध्येय पाश्चात्य मनीषी भले ही कहते फिरे कि कला कला के लिए कुछ हुआ करती है, अर्थात उसमें कलाकार को जीवन का यथातथ्य चित्रित मात्र खींच देना है, उसे आगे नहीं जाना है, किंतु भारतीय साहित्यकार कभी भी यह मानने को तैयार नहीं है। वे जन जीवन अथवा समाज को यथातथ्य चित्र के साथ साथ उसके उत्थान हेतु उच्च आदर्श की स्थापना भी काव्य के अपरिहार्य अंग समझते हैं। प्रेमचंद्र के शब्दों में कला वह है जिसमें जीवन का सौंदर्य हो, सृजन की आत्मा हो, जो हम में गति संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं। फलतः काव्य जीवन के सत्यम और सुंदरम तत्वों के साथ साथ शिवम तत्व का भी हमारे यहाँ अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यदि काव्य से शिवम तत्व हटा दिया जाए तो वह कुकाव्य है। यदि साहित्यकारों ने सबसे पहले काव्य के ध्येय पर विचार किया है और वे सभी कुछ शब्दों में हेर फेर के साथ अंत में एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, काव्य प्रकाश में काव्य व्यवहार ज्ञान यश और धन प्राप्ति के साथ साथ सद्य परिनिव्रतते और शिवेत रक्षते कहकर रस द्वारा निरतिशय आनंद की उपलब्धि तथा श्वेत रक्षति जीवन का शिव निर्माण या भव्य आदर्श बताया है। आदर्श का उपदेश काव्य में किसी नीतिकार या प्रभु के वेद वाक्य जैसे अनुलंघ्य आदेश के रूप में नहीं प्रत्युत कांता संभितया होता है, अर्थात जिस प्रकार कांता मधुर भाव हाव भाव के साथ रस भरे वचनों से प्रियतम को समझाती हुई अभीष्ट मार्ग की ओर उन्मुख हो करती है, वैसे ही काव्य कला के भी रस द्वारा अलौकिक आनंद सृजन करती हुई सुरदेव अथवा सामाजिकों को कल्याण की ओर अग्रसर करती है। मम्मट द्वारा अभिहित काव्य के इस सूत्री ध्येय में ही सभी अन्य अलंकारिकों के कहे काव्य ध्येय समाविष्ट हो जाते हैं। दर्पणकार ने चतुर्थ वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्प अधिकमपि कहा है। चतुर्थ के अभिप्रेत जीवन के धर्म अर्थ काम और मोक्ष के चार ध्येय होते हैं, इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। रामायण आदि काव्यों में अनुशीलन से अंतोगत रामादिवत प्रेमति अभ्यम और रावणादि कृत्याकृत्य प्रभृति निवृत्त उपदेश अर्थात रामादि की तरह हमारे सब कार्यों में प्रवृत्ति होनी चाहिए और रावण आदि द्वारा किए अल्प कृत्यों में हमें दूर रहना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त कर हम जीवन का भव्य निर्माण कर सकते हैं और इसी का नाम धर्म होता है। अर्थ धन को कहते हैं और जो मम्मटाचार्य ऊपर बता ही आए हैं काम सुखोपभोग है और अर्थाधीन रहता है। हाँ, दर्पणकार ध्येयों में मम्मट की तरह यश का उल्लेख न करके मोक्ष को गिना रहे हैं और परंपरा संबंध की कल्पना करके कठिनाई के साथ उसका काव्य के साथ जोड़ रहे हैं। हमारे विचार से अच्छा होता यदि वे मम्मट के साथ संध्या परिवृत्ति ही की को ही अपना लेते तथा आध्यात्मिकता में न जाते। वास्तव में विश्वनाथ ने भामह के निम्नलिखित श्लोक का ही अनुकरण किया है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच्य क्षणयम् कलासु च करोति कृति प्रीति च साधु काव्य निषेवणम्। काव्य अलंकार, काव्य का लक्षण। साहित्य शब्द के विवेचन के समय हम पीछे काव्य कला पर हल्का सा प्रकाश डाला है, किंतु काव्य का निश्चित लक्षण अथवा स्वरूप बताना अभी सभी अलंकारिकों के लिए आवश्यक समझा है और अपनी अपनी दृष्टि के उनका निरूपण भी किया है। यदि साहित्य दर्पण की तरह यहाँ हम काव्य शब्द की भी व्युत्पत्ति करना चाहे तो इस प्रकार होगी। कौति कवते कवयति वा कवि तस्य कर्म काव्यम, अर्थात जो व्यक्ति शब्द करे अथवा मुख से शब्दों को निकाले वह कवि है और उसका कर्म काव्य है। किंतु शब्द कभी अकेले नहीं रह सकते हैं, उनके साथ कालिदास की वागार्थी संप्रक्त इस उक्ति के अनुसार अर्थों का संपर्क अभिनय भाव संबंध स्वतः सदा ही बना रहता है। इस तरह अर्थानुगत शब्दों का समुदाय काव्य शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ निकलता है। इसलिए पूर्ववर्ती साहित्य शास्त्रियों भामह मम्मट कुंतक रुद्र आदि ने काव्य का लक्षण साधारणतः शब्दार्थयु काव्यम अथवा शब्दार्थयु सहितयु काव्यम किया है। किंतु प्रश्न उठता है कि सभी शब्दार्थ काव्य होते हैं। इसका उत्तर हमारे पास नकारात्मक होगा, क्योंकि सभी शब्दार्थ काव्य नहीं बन सकते। उदाहरण के लिए सुनते हैं कि राजा भोज के सभा में एक बार कोई दीन ब्राह्मण भोजन की भिक्षा मांगता हुआ निवेदन कर बैठा, भोजनम देहि मे राजन धुत्त सुपसमन्वितम। इन शब्दों शब्दार्थों का राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। यह तो कालिदास ही थे जिन्होंने ब्राह्मण पर दया खाकर झट ब्राह्मण की तरह से स्वयं छंद पूर्ति कर दी। माहिषम च सरचंद्र चंद्रिका धवलम दधि, सुनते ही राजा प्रभावित हो गए और उन्होंने ब्राह्मण की कामना पूरी कर दी। इसी प्रकार प्रश्न आचार्य भामह ने भी उठाया और स्वयं ही उसका उत्तर भी दे दिया। गतोस्तमर्को भातिन्दुः यान्ति वासाय पक्षिणः इत्येवामादिकं काव्यं वार्ताम् एता प्रचक्षते। सूर्य छिप गया, चंद्रमा चपक गया, रहा है, पक्षीगण घोंसले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, इत्यादि वा शब्दार्थ काव्य है क्या? नहीं, यह तो साधारण जन भाषा की बात बीत है। एक उदाहरण के विभाषा का भी लीजिए। मुगल सम्राट शाहजहां के पास अंतरंग सभा में पंडित राज जगन्नाथ बैठे थे और विद्या संबंधी चर्चा चल रही थी। इसी बीच पंडित राज को प्यास लग गई और उन्होंने पानी मंगवाया। शाही फरमान पर एक नवयुवा लड़की सिर पर कलश लिए मटकी मटकती छमछमाती आ पहुंची और जल पिलाकर चल दी। पंडित जी की आंखें उस पर उलझ गई, वे उसे पानी के बदले हृदय दे बैठे। बादशाह के मार्ग वे आगे हृदय दुगार नहीं रोक सके और बोल ही पड़े, इयम् सुस्तरी मस्त कन्यस्त कुंभः कुसुम्भ वारुणम् चारुदेहम् वशान समस्तस्य लोकस्य केतः प्रवृत्तिम् गृहीत्वा घटेन्यस्य ज्ञाति उभाति। सुनते ही सम्राट का हृदय उछल पड़ा और वे गदगद हो उठे। शब्दार्थ ही पंडित राज के बड़े चमत्कार विशिष्ट एवं मर्म स्पर्शी थे। उठे पंडित राज, मांगो, क्या मांगते हो? हम तुम्हारी कविता पर मुग्ध है। किंतु पंडित जी भोजराज दरबार वाले ब्राह्मण की तरह भोजन भिक्षु तो थे नहीं, वे मन की मुराद मांग बैठे। न याचे गज्जलिम न वा वाजिराजम न विते सुचित्तम मदियम कदाचितम इयम् सुवस्तरी मस्त कन्यास्त कुंभा लवंगी कुरंगी मदंगी करोतु। सम्राट ने झट लवंगी बुलाई और उसको पंडित राज के हाथ पकड़ा दिया। यह है कवि भाषा के शब्दार्थों का जादू, जो सिर पर चढ़कर बोलता है। ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि काव्य तो साधारण जन भाषा के बोलचाल के शब्दार्थों में नहीं बल्कि कवि भाषा के शब्दार्थों में रहता है। काव्य तो प्रयोजन शब्दार्थ विशिष्ट ही होते हैं, साधारणतया नहीं। वह वैशिष्ट शब्दार्थों में क्या, इस संबंध में अलंकारिकों के विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्पणकार ने दिया है और साथ ही उनका खंडन भी कर दिया है। सबसे पहले वे मम्मटाचार्य को लेते हैं जिन्होंने काव्य का लक्षण इस प्रकार किया है, तद दोसौ शब्दार्थो सगुण वनलंकृत पुनः क्वापि, अर्थात दोसा भाव गुण और सर्वत्र अलंकार विशिष्ट शब्दार्थ काव्य होते हैं, किंतु दर्पणकार का कहना है कि दोसा भाव काव्य का निर्मापक तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि दोष होने पर भी शब्दार्थों में काव्यत्व यथावत बना ही रहता है, भले ही उपादेयता उसकी कम हो जाए। गुण शब्दार्थों में रह ही नहीं सकते, क्योंकि वे रस धर्म है, अलंकार भी अनिवार्य तत्व नहीं आगंतुक धर्म है। इसके बाद दर्पणकार ने कांतुक में वक्रोक्ति काव्य जीवितम इस लक्षण पर प्रहार करते हुए कहा कि वक्रोक्ति को एक अलंकरण मात्र है,
वह भला काव्यात्मा कैसे बन सकती है। इसी तरह उन्होंने ध्वनि प्रतिष्ठापनाचार्य आनंद वर्धन के काव्य आत्मा ध्वनि इस लक्षण पर भी आपत्ति उठाई है कि ध्वनि विशिष्ट शब्दार्थ काव्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ध्वनि के क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है। यह काव्य सीमा से बाहर वस्तु और अलंकार को भी अपने भीतर समेटे रहती है, काव्य तक सीमित रही है। अंत में रीति को काव्यात्मा मानने वाले वामनाचार्य को भी दर्पणकार ने नहीं छोड़ा। यह कहते हैं कि रीति को एक तरह का वचन विन्यास मात्र है, शरीर में अवयव संस्थान का रूप है, वह काव्य नहीं बन सकती है। दर्पणकार के बहुत समय बाद पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रातिपदिकार्थ शब्द काव्यम कहा है। यह पंडित राज पहले हुए होते तो दर्पणकार शब्द के को काव्य मानने वाले इन्हीं भी इसी तरह फटकार देते, किंतु हमें दर्पणकार की ये सभी बातें अच्छी नहीं लगती। यह उक्त काव्य लोचना मान्य प्राचीनाचार्यों के सिद्धांत की ऊपरी सतह तक ही रह गए, गहरे में नहीं बैठे। दर्पणकार ने रसात्मकम वाक्यम काव्यम यह जो अपना शुद्ध काव्य लक्षण होने का दावा किया है, इस पर भी हम इन्हें पूछ सकते हैं कि वाक्य आखिरकार अर्थान गति शब्द समुदाय नहीं है, तो क्या शब्द को ही वैशिष्ट्य मानकर रस का इसमें इन्होंने वैशिष्ट्य माना है। मम्मट ने ग्रंथ के प्रारंभ में ही सकल प्रयोजन मौलिभूतम विगलित वेदांतरम मानमनंदनम कहकर रस को काव्य में मूर्धन्य स्थान दिया है, अन्यत्र स्थान में भी रस का वैशिष्ट स्वीकार कर रखा है। लक्षगुणों शब्द परंपरा संबंध से रस को ही बता रहा है, अन्यथा दर्पणकार को ही हम पूछेंगे कि उनके शब्द रूप वाक्य में भी रस की सत्ता कैसे हो सकती है। काव्य प्रकाश का गुण है और रस आनंदमय रागात्मक अनुभूति आत्मा का गुण है, वह आत्मा में ही रहेगा, शब्द में नहीं। गुण में कहाँ रहता है यदि परंपरा संबंध की कल्पना करके शब्द द्वारा आत्मा में अनुभूति मानते हो तो वह दर्पणकार को फिर पूछेंगे कि परंपरा संबंध में गुण द्वारा रस ग्रहण करने में क्यों उन्हें साप सुंग जाता है। उपरोक्त बात आनंद वर्धनाचार्य के संबंध में ही भी समझिए, उन्होंने भी रक्त रस ध्वनि को सर्वत्र प्रमुखता दे रखी है। इस ध्वनि में से अतिरिक्त वस्तु और अलंकार ध्वनि तक भी काव्य क्षेत्र का विस्तार मानने में हम समझते हैं ध्वनिकार ने कोई गलती नहीं की है। ध्वनि प्रकरण में स्वयं विश्वनाथ ने वस्तुअलंकार स्वरूपत्वात् शब्द सत्तद्भवविदिधा यह कहकर रस ध्वनि के अतिरिक्त वस्तु और अलंकार ध्वनि में काव्यत्व मान ही रखा है। इसी तरह गुणीभूत व्यंग काव्यों में से तुल्य प्राधान्य स्फुट व्यंग अगुण व्यंग आदि भेदों के उदाहरण में दिए हुए ब्राह्मण अतिक्रम त्यागे संबंध सर्वस्व हरणम आदि में हम रस ध्वनि का रस स्पर्श तक भी नहीं कर पाते, लेकिन दर्पणकार ने काव्य में ही माना है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम इस काव्य लक्षण में पंडित राज को रमणीयता से अभिप्रेत केवल रस ही नहीं बल्कि अर्थ में रमणीयता लाने वाले रस से भिन्न और चीजें है। वर्णन में चमत्कार होना चाहिए, तारों के रूप में सितारे जड़ी नीली साड़ी पहने रजनी अथवा अचेत सोए पड़े जगत को धवल परिधान से आच्छादित किए चंद्रोत्सना अथवा मधुर कालो कलोलों से इठलाती बखलाती बलखाती कालकल निनांदिनी नदी आदि प्रकृति तत्वों के आलम्बनात्मक स्वतंत्र आकर्षक सौंदर्य चित्र किस हृदय के हृदय को आनंदोलिखित नहीं करते। इन सौंदर्य अनुभूति को हम काव्य क्षेत्र से बाहर नहीं निकाल सकते। इस तरह निरस होते हुए भी चमत्कारी वस्तु एवं अलंकार के व्यंजक शब्दार्थों में ध्वनिकार ही नहीं बल्कि अन्य अलंकारियों अलंकारिकों ने भी निश्चित रूप से काव्यत्व मान रखा है। रीति और वक्रोक्ति को काव्यात्मा मानने वाले वामनाचार्य और कुंतक ने भी काव्य में रस का प्रधान एवं अनिवार्यता स्वीकार न की हो यह बात नहीं। रीति का अर्थ होता है वचोविन्यास का विशिष्ट प्रकार, ऐसा प्रकार जिसमें शब्दों के भीतर रसानुकूल वर्णों का चयन हुआ हो। यदि रसानुकूल अथवा वर्ण चयन न हो तो रस की अभिव्यक्ति कदापि हो ही नहीं सकती, सारी अनुभूति उलट पलट कर रह जाएगी। इसी आधार पर रीति सिद्धांत की स्थापना हुई है और बामन ने उसे काव्य के मुख्य स्थान दिया है। वक्रोक्ति भी कोई अलंकार मात्र नहीं जैसे दर्पणकार मान बैठे थे, यह भी एक सिद्धांत है जिसमें शब्दार्थ साधारण जनभाषा के न होकर वक्र अर्थात वैचित्र पूर्ण रहता है। यह वैचित्र रस ही वह नहीं बल्कि शब्द अर्थ और वर्ण आदिगत सभी प्रकार के सौंदर्य अपने में अंतर्मुक्त किए रहता है। भामा ने भी लोगों का लोक अति कांत गोचर उक्ति को काव्य का मूल तत्व माना है और इस तरह काव्य क्षेत्र विशाल है। सच पूछो तो काव्य स्वरूप के संबंध में दर्पणकार की तरह खंडन मंडन हमें नहीं रुचता। अन्य कलाओं की तरह काव्य कला भी इतनी विविध रूप और सूक्ष्म है कि उसे सर्वसम्मत निश्चित परिधि के भीतर बांध देना बड़ा कठिन है। अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार जिस परिप्रेक्ष्य से जिसने उसे निहारा अथवा उसका स्वाद लिया उसने उसका वही रूप मान लिया, किंतु वह गलती में नहीं रहा क्योंकि वह रूप कला का एकादेश अवश्य है। यहाँ हम गजानंद न्याय लगा सकते हैं। गज कैसा होता है यह जानने हेतु 5-6 अंधे चिड़िया घर चले आए। उनमें किसी ने गज की पूंछ, किसी ने सूंड, किसी ने पैर, किसी ने कान और किसी ने शरीर छुआ और घर लौटकर अपने साथियों को गज का परिचय देने लगे तो पूंछ पकड़ने वाला बोला कि वह रस्सी जैसा है, सूंड पकड़ने वाला बोला नहीं अजगर जैसा है, पैर पकड़ने वाला बोला नहीं वह तो खंभा जैसा है, कान पकड़ने वाला बोला वह छाज जैसा है और शरीर पकड़ने वाला बोला वह दीवार सा है। यही हाल काव्य लक्षणकारों का भी है। काव्य के संबंध में हमारे यहाँ भी विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं, सो बात नहीं। पाश्चात्य विद्वानों में भी मतभेद पाया जाता है। कालरी जैसे कवि जहाँ शब्द को प्राधान्य देते हैं वह यहाँ शैले हजलिट आदि भावों की उत्कंठा को काव्य का मूल तत्व मानते हैं। कोई जाति तत्व के समर्थक है। इस तरह हम देखते हैं कि कोई काव्य के शब्दार्थ शरीर अथवा कला पक्ष पर बल देता है तो कोई उसके हृदय अर्थात भाव पक्ष को अपनाता है, किंतु सभी दृष्टिकोणों में देखा जाए तो कुल मिला जुला कर अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि काव्य लेख भद वह रचना है जिसमें शब्द अर्थ और भाव ऐसे विशिष्ट अर्थात चमत्कार पूर्ण हो जो हृत्पिंड को छूते हुए हमारे भीतर प्रस्तुत वस्तु की मार्मिक भावना को उतार दे और हमें हाल अलौकिक आनंद के मग्न कर दे। केवल भाव पक्ष की बात लक्ष्य करके विश्वनाथ कविराज ने काव्य के भाव प्रधान परिभाषा यह की है, वाक्य रसात्मकम काव्यम, आत्मा शरीर के बिना टिक नहीं सकती, शरीर के साथ यथास्थान अवयव संस्थान चाहिए, उसमें गुण और दोषा भाव को शोभादायक भूषण ही चाहिए, तब जाकर वह अपना पूर्ण रूप बना सकेगी। इसलिए दर्पणकार ने काव्य कला को भौतिक रूप देते हुए शब्दार्थ रूप दो तत्वों से उसका शरीर निर्माण किया, रीतियां अवयव संस्थान रखी, माधुर्य गुण आदि स्वर आदि स्थानीय किए दोष काणत्व खंजत्व आदि के रूप में लिए हुए उपमा आदि अलंकारों को कटक कुंडल आदि का रूप दिया। अंत में रस की प्राण प्रतिष्ठा करके देह को सात्म कर्ण बनाकर उसका जीवन रूप हमारे आगे खड़ा कर दिया है कि देखो यह है काव्य कामिनी शब्द शक्तियों। ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है कि काव्य वह वाक्य होता है जिसके भीतर रस आत्म स्थानीय हो अथवा जिसमें रस प्राण तत्व का काम करता हो। वाक्य के संबंध में हम पीछे संकेत कर आए हैं कि वह वाक्य स्याद योग्यता कांक्षस्मिन युक्त पदोच्य हुआ करता है, अर्थात तो वाक्य ऐसे विशिष्ट शब्दों का समुदाय है जिनकी आपस में योग्यता ठीक ठीक तालमेल बैठ जाए, जो परस्पर सापेक्ष हो और देशतः कालतः एक दूसरे के निकट हो। ऐसे शब्दों में ही अर्थ प्रतिपादन की क्षमता रहती है, अन्यथा नहीं। आकाश में फूलों की क्यारियां बनाओ और उन्हें भाग से सींचो, लड्डू घोड़ा चमली बेल एवं गुरु खाओ, आम को प्रणाम करो अथवा राम बन आज बोलो और जाता है कल बोलो, ये ऐसे शब्दों के समुदाय हैं जैसे जिन्हें योग्यता आदि के अभाव के कारण हम उन्मत्त प्रलाप कहेंगे। ये वाक्य की सीमा के भीतर नहीं आ सकते हैं, इनसे कुछ भी वाक्यार्थ प्रतिपादन नहीं होता है। हाँ, यदि उद्यान में क्यारियां बनाओ और उन्हें पानी से सींचो, तो लड्डू खाकर घोड़े पर चढ़ो, चमेली की बेल लाओ, गुरु को प्रणाम करो, आम को खाओ अथवा एक साथ कहिए राम बन जाता है, तो योग्यता आकांक्षा और आसक्ति से युक्त एक शब्द समूह वाक्य बन जाएंगे। साहित्यकार कृष्ण शब्दस्य शक्तः मानते हैं जो अर्थ का प्रतिपादन करती है ये तीन शक्तियाँ हैं, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। शक्ति के दो व्यापार अथवा शब्द वृत्ति भी कह सकते हैं। अभिधा का सर्वप्रथम स्थान है, जल भाषा के निर्माण में इसका बड़ा हाथ रहता है। इससे शब्दों का वह अर्थ बताया जाता है जो आम व्यवहार में होता है। इसे शब्द का मुख अर्थ भी कहते हैं। इसका परिभाषिक नाम सांकेतिक अर्थ है। संकेत शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध कहलाता है, जिसका रूप है अस्मात् पदमायवर्थो बोधव्यः। गोह शब्द को उच्चारण करते ही अभिधा शक्ति द्वारा हमें खुर सिंह स्ना शासन आदि से युक्त एक पशु विशेष का बोध होता है। अभिधा द्वारा बताए जाने पर इसे अभिधेय अथवा वाच्य अर्थ कहते हैं और शब्द को अभिधायक अथवा वाचक शब्द। प्रश्न उठता है कि संकेत का ज्ञान अर्थात इस शब्द के मुख्य अर्थ यह है कैसे होता है। उत्तर में विश्वनाथ ने नैयायिकों द्वारा गिनाए संकेत बोध के निम्नलिखित साधन बताए हैं। शक्ति ग्रहम व्याकरण उपमान कोशाप्त वाक्याद व्यवहार पतश्च वाक्य सशेषाद वृति तेर वदन्ति तन्सन्निध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा। यहाँ यो क्रम रखिए, सबसे पहले बच्चा घर से माँ बाप आदि का शब्द प्रयोग सुनता है, फिर स्कूल में यहाँ गुरुजनों से सुनता है, बाद में जो कोश व्याकरण टीका आदि से शब्दों का अर्थ ग्रहण करता है। अभिधा के उदाहरण के लिए पीछे दी गई भामह की गतोष्मरकह वाली उक्ति देखिए अथवा गौह घासम चरंती लक्षणा। अभिधा के बाद दूसरा स्थान लक्षणा का आता है, जिसका स्वरूप दर्पणकार के अनुसार यह है मुख्यार्थवाद्ये तदयुक्तो यान्यो अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनादवासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। हम पीछे देख आए हैं कि वाक्य बनने के लिए शब्दों में योग्यता होनी चाहिए, अर्थात मुख्य अर्थों में परस्पर ठीक ठीक संबंध बना रहे। यदि संबंध में बाधा आ पड़े तो मुख्यार्थ में संबंध रखने वाले दूसरा अर्थ देकर यहाँ वाक्य बनाना चाहिए, लेकिन यह अपवाद स्वरूप है। कारण यह कि ऐसा हमें तभी करना पड़ता है जबकि अन्य अर्थ में कोई रूढ़ी हो अथवा लोक प्रसिद्धि या तो फिर वक्ता का कोई विशेष प्रयोजन हो। यह दूसरा अर्थ लक्षणा शक्ति द्वारा ही प्रतिपादित होता है। यह अर्पित अर्थात कल्पित शक्ति का अविधा की तरह स्वाभाविक नहीं। हमने अविधा के संबंध में गौ घासम चरंती कहा है, लक्षणा के संबंध में हम कहेंगे गौ जलपति। जरा सोचिए कि सिंह पूंछ वाला चौपाया जानवर क्या कभी बोल सकता है? कदापि नहीं। बोलता तो मनुष्य है। लक्षणा यहाँ गौ से सादृश्य संबंध रखने वाला सीधा सादा जड़ मंदमती व्यक्ति रूप दूसरा अर्थ बतला देती है, अर्थात बड़ा भोला आदमी बोल रहा है। अब अर्थ संगति ठीक बैठ जाती है। इसमें वक्ता का प्रयोजन उस शक्ति का अत्यंत भोलापन और मंदमत इसमें वक्ता का प्रयोजन उस व्यक्ति का अत्यंत भोलापन और मतिमांध्य बताना है। इसी तरह वह गधा है, उल्लू है आदि समझ लें। कभी कभी लोक प्रसिद्धि के कारण भी लक्षणा करनी पड़ती है, जैसे कलिंग साहसी का सहसा चेतना का धर्म है और वह जड़ भूखंड विशेष कलिंग देश में कैसे हो सकता है, लेकिन यह लोक प्रसिद्धि की देश से देशवासी लोग लिए जाते हैं, इसलिए लक्षणा वहाँ कलिंग शब्द से कलिंग देशवासी रूप दूसरा अर्थ बताती है। कलिंग देशवासी लोग साहसी होते हैं, यह अर्थ ठीक संगत हो जाता है। इसी तरह पंजाब वीर है, बंगाल बुद्धिमान है, इंग्लैंड कूटनीतिज्ञ है इत्यादि भी समझ लीजिए। दर्पणकार के अनुसार लक्षणा के लिए चार बातें अपेक्षित है, मुख्यार्थ वाद्य, मुख्यार्थ संबंधी अन्य अर्थ, रूढ़ी और प्रयोजन। इनसे अन्यत्र लक्षणा गति नहीं है। यदि कोई करता है तो दोष है। हमें मुख्यार्थ वाद्य और मुख्यार्थ संबंधी अन्य अर्थ इन दोनों पर कुछ विचार करना है। मुख्यार्थ वाद्य का अर्थ मुख्यार्थों के संबंध परस्पर संबंध का अभाव अथवा अन्वयानुपति किया जाता है, किंतु इस तरह अर्थ करने में लक्षणा का क्षेत्र संकुचित हो जाएगा और लक्षणा में अव्याप्ति दोष भी आ जाएगा। गौ जलपति कलिंग साहसिक आदि में तो ठीक है क्योंकि वहाँ अन्वय उत्पन्न नहीं है, किंतु हम देखते हैं कि कितने ही ऐसे लक्षण के स्थल हैं जहाँ मुख्यार्थ वाद्य नहीं होता है। जैसे घर के लिए पत्ते के दोने में दही देकर बाप पुत्र को कहता है काचेभ्यो दधिरक्षता, यानी कौओं से दही बचाना। कौओं से दही बचाने का अर्थ में कोई अन्वयानुपत्ति नहीं है, किंतु बाप का यह मतलब नहीं कि बेटा कोई कौओं से ही दही बचाना, लेकिन यदि चील आदि दही खावे तो खाने देना। इसलिए काकेभ्य शब्द से यह लक्षणा द्वारा दध्य उपाधक जीव मात्र रूप अन्य अर्थ लिया जाता है। इसी तरह गंगायाम घोष हमें जल प्रवाह रूप गंगा में घोष गोपाल नामक ग्रामक संबंध बाधित होने पर गंगा शब्द से गंगा समीपवर्ती तीर रूप अर्थ लिया जाता है, अर्थात गंगा के तीर पर घोष है। इस तरह यहाँ गंगा शब्द लाक्षणिक माना गया है और घोष शब्द को मुख्य अर्थ का वाचक कहिए, किंतु कभी कभी यह देखते हैं कि गंगा में मछली मारने वाला कोई धीवर एक जगह जल में इकट्ठी हुई ढेरों मछलियों को देख करके साथियों के बोल देता है गंगायाम घोष। ऐसी हालत में घोष शब्द की लक्षणा घोष के इकट्ठे करने वाले मनुष्यों के सादृश्य से जल में इकट्ठी हुई मछलियों के ढेर को की जाती है। यहाँ गंगा शब्द अपने जल प्रवाह रूप मुख्यार्थ का ही वाचक है, जबकि घोष शब्द लाक्षणिक है। ऐसी स्थिति में हम दर्पणकार को पूछ सकते हैं कि इस बात का विनिमग्न विनिगमक अथवा व्यवस्थापक कौन है कि यहाँ लक्षणा गंगा शब्द में करनी है या घोष शब्द में। लक्षणा प्रयोजक मुख्यार्थ वाद्य दो तो दोनों जगह एक सा है, इसलिए मानना पड़ेगा कि लक्षणा का मूल कारण मुख्यार्थों में अन्वयवाद नहीं बल्कि तात्पर्यवाद है। तात्पर्य वक्ता की इच्छा को कहते हैं। वक्ता के करने का तात्पर्य यदि घोष शब्द से ग्राम में है तो गंगा शब्द में लक्षणा होगी, और यदि उसका तात्पर्य मछलियों के ढेर में है तो लक्षणा घोष में होगी। इसी तरह लक्षणा का बीच अन्वयानुपपत्ति नहीं बल्कि तात्पर्यानुपत्ति है, अतः तदयुक्त अन्य अर्थ को भी लीजिए। दर्पणकार ने प्रयोजनवती लक्षणा का एक उदाहरण यह दिया है। स्निग्ध श्यामल कांति लिप्ति वितयोह वेलद्वाल वलाकाह घन वताह शरीकृणी पयोदह कुहृदय मनंदकेकाह कला कामं संतो द्रहं कठोर हृदयो रामो अस्मि सर्वशहे वैदेही तु कथं भविष्यति विषयोः वा देवी धीरा भव। यह बोलने वाला स्वयं राम है, अतः अस्मि पद में ही राम अर्थ निकल जाता है। फिर राम का स्वयं को राम शब्द से कहने में पुनरुक्ति होने से मुख्यार्थ बाध्य है, इसलिए दर्पणकार ने राम शब्द की अत्यंत दुसहिष्णु रूप राम में लक्षणा की है। हमें यहाँ अब यह देखना है कि क्या लक्ष्यार्थ अत्यंत दुख सहिष्णुता राम मुख्यार्थ राम से अन्य अर्थात भिन्न है। हमारी दृष्टि में दोनों जगह व्यक्ति रूप राम एक ही है, दोनों नहीं। फिर मुख्यार्थ से ग्रंथ अन्य अर्थ न होकर पर होने पर यहाँ लक्षणा कैसे? इसका उत्तर यही हो सकता है कि हम यहाँ मुख्यार्थ से अन्य का अर्थ मुख्यार्थ व छेदक धर्मा अतिरिक्त धर्मावच्छिन्न ले मुख्यार्थता राम में है, तब छेदक धर्म रामत्व है, उससे भिन्न धर्म अत्यंत दुख सहिष्णुता रामत्व होगा, जिससे अवच्छिन्न राम अन्य सिद्ध हो ही जाता है। किंतु क्योंकि व्यक्ति रूप में राम दोनों राम एक होने पर भी रामत्वेन और अत्यंत दुसहिष्णु रामत्वेन दोनों भिन्न भिन्न राम हो सकते हैं, इसलिए अन्य होने में कोई बाधक नहीं, विशेषण भेदक होता ही है। इस तरह लक्षणा में लक्षण का मुख्यार्थ बाध्य और अन्य अर्थ को लेकर ऊपर उठाए शंका समाधान की शर्त बातें न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार विश्वनाथ ने खोली है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ एकदम चुप ही है, उन्हें अवश्य विवेचन करना चाहिए था। रूढ़ी और प्रयोजन को लेकर दर्पणकार ने पद और वाक्य में विभक्त करके लक्षणा के कुल मिलाकर 80 भेद गिनाए हैं। दूसरे शब्दों में यूँ समझ लीजिए कि साहित्य क्षेत्र में लक्षणा शक्ति का प्रयोजन हम अधिक से अधिक 80 स्थलों तक ही सीमित पाते हैं, जबकि अभिधाधा सर्व व्यापक है। किंतु ध्यान रहे कि लक्षणा एक कल्पित शक्ति है, गंगा का तीर अर्थ कल्पित है, स्वाभाविक नहीं। लक्षणा ही से कवि रहे भाषा बननी आरंभ होती है, उसे जब व्यंजना शक्ति का सहयोग मिलने लगता है तो वह कवि के लिए एक विचित्र कल्पना लोक का सृजन कर बैठती है। लक्षणा द्वारा किया गया कल्पना का एक उदाहरण लीजिए। कमल मन्म भसि कमले कुवलये तानि च कनकलती कयाम सात सुकुमार सुभग्ये त्युत्पाद परम्परा केयम्। अर्थात जल के बिना कमल है, कमल पर दो कुवलय है और ये तीनों सोने की लता पर हैं। लता बेचारी बड़ी सुकुमार है, उन्हें धारण करने में उसे कितनी मुसीबतें उठानी पड़ रही है। कमल से मतलब मुख, कुवलयों से मतलब मुख पर दो आंखें, कनक लता से मतलब नायिका की स्वर्ण गाल है, वह सब लक्षणा का ही हो तो विलास है। व्यंजना अभिधा और लक्षणा के बाद दर्पणकार व्यंजना शक्ति का स्वरूप इस प्रकार बतलाते हैं। विरता स्वाभिधायाद्यासु ययायर्थो बुद्ध्यते परः सा शक्तिर व्यंजना नाम शब्दस्यार्थदीकस्य च। अभिधा और लक्षणा जब काम कर चुकी है तो वे समाप्त हो जाती है, किंतु उसके बाद भी जानने का मुख्य अर्थ शेष रह जाता है, उसे बताने हेतु ही व्यंजना शक्ति उपादेय होती है। लक्षणा में गंगायाम घोषः में गंगा से गंगा समीपवर्ती तीर प्रदेश बता रही है, लेकिन वहाँ का घोष कितना ठंडा और पावन है यह भी बता देना लक्षणा का काम नहीं है, क्योंकि शब्द का व्यापार एक ही बार होता है, बार बार नहीं। इसी तरह गजेर अल्पित में गो सदृश व्यक्ति के जन्य और मंद अतिशय बताने में भी लक्षणा सक्षम नहीं, यह काम तो व्यंजना शक्ति का ही है, लक्षणा के प्रयोजन को ही नहीं। प्रत्युत जैसा हम आगे स्पष्ट करेंगे, काव्य में आत्मभूत रस उसके सहकारी भाव तथा अंतर जगत की विविध अनुभूतियों का अभिव्यक्ति व्यंजना शक्ति ही देती है। इसके द्वारा बोध्य अर्थ व्यंग्यार्थ कहा जाता है। व्यंजना के कार्य क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और अभिधा और लक्षणा के साथ रहकर भी काम करती है और इसका स्वतंत्र क्षेत्र भी अपना बड़ा व्यापक है। यह शब्दों के साथ साथ शब्दों के अंश प्रकृति प्रत्ययों तक में भी रहती है। अर्थ क्षेत्र में यह वक्ता श्रोता वाक्य अन्य के सन्निध्य प्रकरण देश काल और चेष्टा तक के भी वैशिष्ट्य में पहुंची रहती है। रसानुभाव करना भी इसी का काम है। इसके द्वारा बताए जाने वाला अर्थ व्यंग कहलाता है। रस और उसका इतिहास। विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है। वाक्य का विवेचन करने के बाद रस का विश्लेषण भी अब आवश्यक है। वैसे तो ब्रह्म निर्मित जगत में भौतिक दृष्टि से रस जिह्वेंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण विशेष को कहते हैं, जैसे मधुर कटु आदि। किंतु कवि जगत का रस इससे बिल्कुल भिन्न है। वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है। वह तो एक अविर्वचनीय केवल हर्ष हृदय संवेद आनंद विशेष का नाम है, जो काव्य पढ़ने सुनने अथवा नाटक देखने से सुहृदय लोगों को हुआ करता है। इससे हम काव्य रस कहेंगे। रस तत्व विश्लेषण करने में पूर्व हम चाहेंगे कि इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया जाए। इसमें दो मत नहीं हो सकते कि काव्य क्षेत्र में रस की उद्भवता का भी भरत मुनि को है। यदि रस प्रतिष्ठा पनाचार्य है, प्रश्न उठता है कि उनसे पहले रसवाद के अभाव में फिर काव्य की क्या स्थिति थी। आदि काव्य रामायण के बाद उल्लेख मिलता है कि सूत्रकार पाणिनि ने पाताल विजय और जामवती विजय तथा वार्तिकार कात्यायन मुनि ने वारुरुच्य काव्यम लिखे थे। सुनते हैं भास ने विष्ण धर्म काव्य भी लिखा है। यह सब अब लुप्त है। सौभाग्य से भास के लिखे नाटक खोज निकाले गए हैं। इनसे भी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। अध्ययन से मालूम होता है कि तुलना में कालिदास और भावभूति आदि में नाटकों के आगे भास के नाटक जरा भी टिक नहीं पाते हैं। कारण स्पष्ट है। परवर्ती कालिदास आदि नाट्यकारों को भरत मुनि की आविष्कृत रस प्रक्रिया प्राप्त थी। वे नाटक का सर्वस्व रस विव्यंजना में ही देखते थे, अन्य उपकरणों में नहीं। इसके विपरीत पूर्ववर्ती भास आदि को रस प्रक्रिया का पता नहीं रहा। उस समय अंतर जगत की वृत्तियां अर्थात रति ह्रास आदि भाव अपने यथास्थिति मौलिक रूप में रख दिए जाते हैं। वे प्रदीप्त मात्र होकर हमारे चिंतन के विषय भले ही बन जाते हैं, लेकिन चर्वणा के विषय नहीं होते थे। उन्हें विभावित अनुभावित और संचारित करके अलौकिक साधारणीकरण व्यापार द्वारा प्रेक्षकों अथवा श्रोताओं और पाठकों को मूल पात्रों के साथ एकीकृत करते हुए उन्हें आनंद ब्रह्मानंद सहोदर आनंद में विभोर कर देने की बात तब थी ही नहीं जो भास आदि आदियोगीन कलाकारों में आ पाती है। इसके अतिरिक्त रस प्रक्रिया हेतु सामग्री बटोरने की आवश्यकता ने बाद के कलाकारों में जहाँ कल्पना शक्ति उभारी, वहाँ भास आदि उससे वंचित रह गए। इसमें उनकी कलाधार पर ही उछलती रहती, आकाश में न उड़ सकी। रस क्या है, उसके संबंध में भरत मुनि का मूल सूत्र यह है। विभावानुभाव व्यभिचार ही संयोगाद निष्पति ही आदि व्याख्या विश्वनाथ कविराज ने इस प्रकार किया है। विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणः तथा रसातमत इति तसत्याध्यस्थायि भावः सचेतसाम। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्ति हुआ स्थायी भाव ही हृदयों के लिए रस बन जाता है। विभाव बहिरेन्द्रिय बाह्य मूर्त पदार्थ नायक नायिका आदि होते हैं, जो हमारे हृदय के भाव को उद्बुद्ध करते हैं। भाव के उद्बुद्ध हो जाने पर विभाव के पीछे होने वाली बाह्य प्रतिक्रिया अथवा कार्य अनुभाव कहलाता है। संचारी और अस्थायी ये तो हृदयगत भाव होते हैं जो अमूर्त है। संचारी चल अर्थात अस्थिर भाव होता है, जबकि स्थायी स्थिर भाव होता है जो बना ही रहता है। शब्दांतर में समूह आत्मक आस्वाद वाले प्रपाणक रस की ही तरह मिलकर एक साथ अभिव्यक्त हुए विभाव अनुभाव संचारी और स्थायी भावों के समूहात्मक विचित्र आस्वाद ही रस है, जो विश्वनाथ के शब्दों में स्वप्रकाश अखंड अद्भुत आनंद और चिद्रूप है। विक्षेप में यूँ समझ लीजिए कि रसास्वाद ब्रह्म स्वाद का सहोदर है। ब्रह्म स्वाद के क्षण में जिस प्रकार योगी अपने व्यक्तित्व को भुलाकर तन्मय हो जाता है, दिन दुनिया ही उसे कुछ सूझ नहीं रहती, वही हाल रसानंद भोगी सुहृदय का भी समझे। ब्रह्मानंद सहोदर इसलिए कहा है कि रसानंद के और ब्रह्मानंद में कुछ भेद है। वह यह कि रसानंद में संसारिक विषयों का संबंध बना रहता है, जबकि ब्रह्मानंद में संसारिक विषयों के सर्वथा रहित है। इसी अभिप्राय से यह कहा गया है, पुण्यवन्तः प्रमीणवन्ति योगिवद रसंसंतितम्। दर्पणकार का भी यह कहना है, कैश्चिद प्रमातृभ्ये प्रावक्तन पुण्यशालिभिः स रसो अस्वाद्यते। इसलिए ब्रह्म स्वाद के अधिकारी योगी की तरह उसने सचेत शाम को ही रसास्वाद का अधिकार चुना है, जिनका चेतस कोमल है, जो दूसरे के दुख विपत्तियों में द्रवित होना जानते हैं। क्रूर व्यास द्वारा मारे क्रोच के विरह में बिलखती तड़पती कौंची को देखकर जिनका हृदय वाल्मीकि की तरह तत्काल रो उठता है, दूसरे के हर्ष में जो फूले नहीं समाते, वन में बिखरी वासंती सौंदर्य छटा निहारने, कोयल की मधुर काकली सुनने एवं तारों से टिमटिमाते रजनी की आकर्षक रमणीयता देखने से मुग्ध हो जाते हैं, वही सचेतस सुहृदय अथवा सामाजिक अथवा प्रमाता कहलाते हैं। इसके लिए प्राक्तनी वासना और यह लौकिक साहित्य अनुशीलना दोनों अपेक्षित है, नहीं तो वे काष्ठकुंजाश्म सन्निभा स्टेज पर लगी कुर्सी मेज अथवा स्टेज की दीवार और दीवार के पत्थर जैसे हृदय शून्य साक्षात पशु पक्षी विषाणहीन ही समझ लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि सचेतस लोगों को भी रसानंद जब कभी नहीं बल्कि सत्वोद्रेकात ही होगा, अर्थात जब उनका चेतस रजोगुण और तमोगुण में अछूता सत्व गुण स्थित तथा शांत प्रसन्न हो। विकृत विक्षिप्त चेतस अनुभूति नहीं होने देता है, वह उसमें बाधक बन जाता है। रस की अलौकिकता, प्रश्न उठता है कि विभाववादी सामग्री रस के अलौकिक होने से रस की अलौकिकता कैसे ठीक है, किंतु विधाता के लोक की कोई भी तो बात इसमें नहीं मिलती जिससे वह लौकिक हो सके। हम कार्य तो इसे नहीं कह सकते, क्योंकि यह किसी से भी उत्पन्न नहीं होता, बल्कि विभावादी समूहात्मक है। कार्य नहीं तो ज्ञाप्य तो है नहीं, यह ज्ञाप्य भी नहीं, क्योंकि रस अपने सत्ता काल में अनिवार्यतः प्रतीत होने वाला है, जबकि ज्ञाप्य वस्तु सत्ता काल में कभी प्रतीत भी नहीं होती लेकिन रहती अवश्य है। रस को हम नित्य पदार्थ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अनुभूति के प्रभाव से इसकी कोई सत्ता नहीं होती। नित्य पदार्थ आकाश आदि को देखो तो अज्ञात होने पर भी वे बने नहीं रहते, तब तो इसे भविष्यकालीन मान लेना चाहिए, नहीं यह स्वप्रकाशक आनंद रूप में साक्षात का विषय होता है। भविष्य का साक्षात्कार कभी भी नहीं होता, इसे फिर वर्तमान मानो, नहीं हम वर्तमान भी नहीं कह सकते, क्योंकि वर्तमान वस्तु कार्य और ज्ञाप्य दो ही तरह की होती है, किंतु इसे कार्य और ज्ञाप्य कोटि से बाहर हम ऊपर बता ही आए हैं। यदि कहो कि यह तब परोक्ष की चीज हुई, नहीं, क्योंकि यह साक्षात्कार अनुभूति विषय है, परोक्ष कैसे, फिर इसे परोक्ष कहो, नहीं तो इसे हम प्रत्यक्ष भी नहीं कह सकेंगे, क्योंकि यह काव्य आदि के शब्दों में होता है, इंद्रिय से नहीं। नाटकों में यद्यपि हमारी चक्षु काम करती है, किंतु यह अभिनेताओं को देख सकती है, रस कोई नहीं देखता, वह तो अनुभूति रूप होता है। इस तरह रस में कोई भी लौकिक धर्म न दिखाई देने से उनकी अलौकिकता ही सिद्ध होती है। तस्माद् अद्भुतम् एवाह दशम नारायण कृति। अपने वृद्ध प्रपितामह के स्वर से स्वर मिलाकर विश्वनाथ को भी कहना पड़ा, तस्माद् अलौकिकम् सत्यम् वेदः सुहृदयैर। रस की अलौकिकता के विरुद्ध में एक प्रश्न छूट गया है, यह कि रस यदि कार्य नहीं तो भरत मुनि विभावानुभाव व्यभिचार संयोगत रस निष्पत्ति ही कैसे कह गए हैं। निष्पत्ति उत्पत्ति को कहते हैं। रस की उत्पत्ति का कारण विभाव आदि का संयोग है, फिर निष्पादन रस क्यों कार्य कर नहीं। सुनिए, इसलिए नहीं कि यह निष्पत्ति शब्द लाक्षणिक है जो चरणसा चरवणा के लिए प्रयुक्त हुआ है। कार्य की तरह चरवणा कभी कभी हुआ करती है, इसलिए चरवणागत कार्य तथा रस से उच्चरित अर्थात गौण रूप से प्रयुक्त की गई है। वास्तविक कार्यता रस के में कभी होती ही नहीं, वह तो समष्टि रूप अविर्वचनीय आनंद स्वरूप है। समष्टि उत्पन्न नहीं हुआ करती, वह तो समिश्रण है अथवा भावों की समिश्रित रूप अभिव्यक्ति है। प्रपाणक रस से इनकी तुलना कर लीजिए। रस का उत्पत्तिवाद हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं कि आनंद रूप रस की अभिव्यक्ति सचेतस लोगों को हुआ करती है, अन्यों को नहीं। किंतु भरत मुनि के उक्त सूत्र की साहित्य लोचकों ने भिन्न भिन्न व्याख्या करके रस के अधिकारियों के संबंध में भी अपना मतभेद दिखाया है। भट लुलट उक्त सूत्र में विभावादी संयोग और रस के कार्य कारण संबंध मानते हैं। उनके अनुसार उक्त संयोग से रस उत्पन्न होता है और वह अनुकारियों से अर्थात जिन दुष्यंत शकुंतला आदि मूल भावों के अभिनेता और अभिनेत्रियों भूमिका अपनाते हैं उनमें रहता है। दुष्यंत आदि मूल पात्रों का कार्य व्यापार अभिनेताओं में आरोपित करके लोग देखा करते हैं और उसे आनंद लेते हैं। दूसरे शब्दों में विश्वनाथ नाटक को भी तभी तदरूपात तू रूपकम कहते हैं। यह समझ लेना चाहिए कि दूसरे शब्दों में नट नटी अथवा अभिनेता अभिनेत्री का रंगमंच पर जो कुछ भी क्रियाकलाप अथवा अनुभूति होती है वह उनकी अपनी नहीं बल्कि वह मूल पात्रों की नकल है। अतः रस मूल पात्रों को ही होता है, इसलिए उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कहते हैं। परंतु भट्ट जी की यह व्याख्या तर्क के आगे टिक नहीं सकती। दुष्यंत को देखकर शकुंतला को अथवा शकुंतला को देखकर दुष्यंत को रत्योद्भव हो जाता है तो इससे क्या। प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य लोक में आज भी यह देखने को मिलता है। यह तो लौकिक बात हुई, यह रस कैसे हो सकता है। रस तो अलौकिक है। दूसरे यह रत्योद्भव केवल दोनों में होने से सीमित है जबकि रस असीमित है। तीसरे दुष्यंत आदि को हुए युग बीत गए, अब देखने सुनने वालों की उनके साथ भला क्या संबंध। किसी को भी अब नाटक नहीं देखने चाहिए न काव्य पढ़ने चाहिए। अतः मूल पात्रों में रस की स्थिति सर्वथा अनुत्पन्न है। रस का अनुमितिवाद आचार्य संकुक भरत के उक्त सूत्र में संयोगात से उत्पादक कारण नहीं बल्कि धूमात आदि की तरह अनुमापक लिंग होते हैं। उनका कहना है कि विभाव आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति अनुमिति होती है। इसी तरह विभाव आदि संयोग की निष्पत्ति के साथ परस्पर अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंध है। विभाव आदि लिंग से मूल नायक नायिका गत रत्यादिक का अभिनेताओं में अनुमान किया जाता है। अभिनेता निसंदेह असली नायक नहीं होते हैं, तथापि हम उन्हें असली समझ बैठते हैं। यह चित्र तुरगन्याय लगा लीजिए, जैसे राम के अश्वमेघीय घोड़े को पकड़े लव कुश का चित्र देखकर हम उनका असली लव कुश के साथ तादात्म्य कर बैठते हैं, वैसे ही यह भी हो जाता है। इस तरह अनुकार्यगत रस अनुकर्ता अभिनेता में अनुमानित किया जाता है। अतः रस अनुकर्ता में रहता है, मूल पात्र में नहीं। रस के अनुमितिवादी के निसंदेह संकुक भट्ट से कुछ आगे बढ़े हैं। मूल पात्रगत इत्यादि को रस न मानने से उन्होंने अपनी अलौकिकता लोक नहीं मानी है। अभिनेतागत होने से अलौकिकता की सिद्धि की है। मूल पात्र और अभिनेता के बीच तादात्म्य भाव में आंशिक साधारणीकरण की ओर भी वे चले हैं। तथापि यह मत त्रुटियों से खाली नहीं है, बल्कि बात तो यह है कि नाटक देखकर हमें आनंदमय रस की साक्षात अनुभूति होती है। इस रूप में उनका अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता है, न कि इस रूप की हमें रस का अनुमान होता है। अनुमान से वास्तविक अनुभूति हो ही नहीं सकती। दूसरे अभिनेता या नट लोग वेतन भोगी कलाकार होते हैं, अपना अपना पाठ याद करके जैसी निदेशक उन्हें आज्ञा देता है वैसा बोल देते हैं और क्रिया कर देते हैं। अभिनय उनकी वृत्ति है, पेशा है, उनका भला रसा स्वाद से क्या संबंध। तीसरे यदि तर्क के लिए उनमें रसा स्वाद या आनंद मान भी लिया जाए तो उनका देखने सुनने वालों में क्या करना है। क्या किसी संपन्न व्यक्ति के आनंदमय जीवन को देखकर किसी निर्धन को किसी ने आनंदित हुआ है कभी पाया है। अतः रस नटों में नहीं, लेकिन हाँ इसका एक अपवाद है, अभिनेता यदि सही अर्थ में अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व अपना अपनी अर्हता खोकर अभिनय दशा में अभिनयमान दुष्यंत आदि मूल पात्रों के साथ अपना पूरा एकात्म साधारणीकरण स्थापित करता हुआ दर्शकों या समाज को किसी आनंदानुभूति प्राप्त कर लेता है तो उसमें भी रस मानने में यह हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। कितने ही कुशल अभिनेताओं के संबंध में हमने सुना है और देखा भी है कि वे तन्मयता में आकर मूल पात्रों के बड़े बड़े कामों तक को पूरा कर तरह से कर दिखाया गया है। वैसी स्थिति में हम उन्हें अनुकर्ता या अभिनेता नहीं बल्कि दर्पणकार के शब्दों में सभ्य पदास्पदम प्राप्त किए गए हैं। भुक्तिवाद। आचार्य भटनायक रस सूत्र की व्याख्या में विभाव आदि संयोग और निष्पत्ति के भोज्य भोजक भाव संबंध मानते हैं। उसके अनुसार भोज्य हुआ रस और भोजक हुआ विभाव आदि संयोग अर्थात विभाव आदि संयोग भोग साधन बनकर सहृदयों को रस की निष्पत्ति भुक्ति का रस देता है। इस मत के भुक्ति अर्थात रसास्वाद न मूल पात्रों में होता है न ही अभिनेताओं में। अभिनेता तो अपनी अभिनय कुशलता से मूल पात्रों का अनुकरण कर देते हैं, ये तो दर्शक श्रोता या पाठक नहीं होते जिन्हें रसास्वाद होता है। वे नाटक देखते हुए अथवा काव्य पढ़ते हुए मूल पात्र दुष्यंत आदि के साथ परस्य न परस्य मम न ममेति के रूप में भेदभाव मिटाकर अपने को विभावन आदि विलक्षण व्यापार द्वारा दुष्यंत और शकुंतला ही समझकर उसी तरह रस का भोग करते हैं जैसे मूल रूप में कवि दुष्यंत और शकुंतला को आया हुआ था। भेद इतना ही है कि मूल अवस्था में दुष्यंत आदि पात्रों के होने वाला आनंद लौकिक परिच्छिन्न और व्यक्तिगत रहा, जिसे हम रस नहीं कहेंगे, जबकि उनका नाटक देखकर आजकल सचेतस लोगों के होने वाला अपरिमित अनिर्वचनीय आनंद अलौकिक होता है जिसे हम रस कहेंगे। रस का अभिव्यक्तिवाद। आचार्य अभिनव गुप्त भारत सूत्र में संयोगात और निष्पत्ति में व्यंग व्यंजकत भाव संबंध मानते हैं। उनका कहना है कि विभाव आदि संयोग व्यंजक बनकर रति आदि भावों को व्यक्त कर देता है जो दृष्टाओं और श्रोताओं में प्रस्तुत रूप से पहले से ही मौजूद रहता है। वैसे तो वे भटनायक द्वारा ऊपर बताई रस प्रक्रिया को यथावत मान गए हैं, किंतु उनका भोज्य भोजक भाव संबंध उन्हें स्पष्ट लगा। अतः उनके मत के अनुसार विभाव आदि के संयोग अभिजन व्यंजन अस्पष्ट लगा। अतः उनके मत के अनुसार विभाव आदि के संयोग अभिव्यंजन से अभिव्यक्त हुआ रति आदि भाव रस रूप में परिणत हो जाता है। रस का यह अभिव्यक्तिवाद बाद को सभी आचार्यों को मान्य हो गया, इसलिए विश्वनाथ ने भी विभावाव्यनुभावेन व्यक्त लिखा है। रस सभी रस को व्यंग ही मानते हैं, अविधा रस को नहीं बता सकती है। श्रृंगार रस हो रहा है, ऐसा कहने से भला श्रृंगार रस कभी किसी का हुआ। लक्षणा मुख्यार्थ वाद्य चाहती है जो यहाँ होता ही नहीं, इसलिए यह व्यंजना शक्ति ही है जिससे हमें रस बोध होता है। व्यंग होने से रस की अलौकिकता का एक बात और देखिए, व्यंजना व्यापार ज्ञान रूप है और रत्योद्बोध रूप रस भी ज्ञान रूप है। तो ज्ञान होने से दो ज्ञानों में व्यंग व्यंजक भाव हो ही जा नहीं सकता। दीप घट न्याय से व्यंग और व्यंजक पृथक पृथक हुआ करते हैं। बात तो ठीक कही, किंतु आप क्यों भूलते हैं कि लौकिक न्याय अलौकिक रूप में नहीं लग सकता। एक दोनों पर भी दोनों में व्यंग व्यंजक भाव न माने तो रस सदा के लिए अज्ञात ही रह जाएगा। इसलिए अगति कगति न्याय ही शरण है, यही इसकी अलौकिकता है। करुण आदि रसों की आनंद रूपता है। प्रश्न उठता है कि श्रृंगार रस प्रधान शकुंतला आदि नाटक देखकर प्रेक्षकों को आनंदानुभूति होने ठीक है क्योंकि रति आनंद रूप होती है, लेकिन करुण रस में शोक अस्थाई भाव होने के दर्शकों को आनंद कैसे? रंगमंच पर मृतक पुत्र को देखकर रोते विलखते बिलखाते हरिश्चंद्र और तारामती के दृश्य के सामने कौन ऐसा सचेतस होगा जो आनंद मनाएगा? यदि कहो कि रंगमंचीय हरिश्चंद्र आदि तो कल्पित हैं, अभिनेता हैं, असली नहीं हैं, कल्पितों से दुख काहे को नहीं? यदि कल्पितों से दुख नहीं होता तो रस्सी पर कल्पित सर्प से लोग क्यों डर जाते हैं और भागते हैं? अतः जिस किसी भी रूप में करुण रस दुख जनक ही है ठीक है, किंतु ऐसा प्रश्न रस की अलौकिकता न समझकर ही किया जाता है। हम पीछे बता आए हैं कि अलौकिक रस पर लौकिक नियम नहीं लगा करते हैं, इसलिए श्रृंगार आदि की तरह नाटक अथवा काव्यगत करुण में भी अलौकिक विभावन आदि व्यापार के प्रभाव में सुख ही होता है, दुख नहीं। इस पर प्रमाण के लिए सचेतस लोगों का हृदय पूछिए, जैसे विश्वनाथ भी पूछते हैं, करुणदा वपीरसे जायते यत् परम सुखम सचेतसानुभावः प्रमाणम तत्र केवलम। तर्क की दृष्टि से भी हम पूछना चाहेंगे कि यदि करुण रस दुख जनक ही है तो क्यों लोग करुण रस वाले नाटक देखने जाते हैं अथवा वैसे काव्य पढ़ते हैं? वह मूर्ख ही होगा जो अपने को दुख में डाले। न्याय शास्त्रियों का कहना है कि किसी भी काम में लोगों की प्रवृत्ति के पीछे दृष्ट साधना ज्ञान कारण होता है, अर्थात लोग किसी भी काम में तब प्रवृत्त होते हैं जबकि उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि इसमें मेरा दृष्टि हित होना है। क्या दुख में भी किसी का कभी हित हुआ है? इसी कारण करुण में भी आनंद जनकता ही रहती है। इसलिए किसी पाश्चात्य मनीषी के शब्दों में अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स, अर्थात हमारे मधुरतम काव्य गीत वे हैं जो बड़े दर्द भरे रहते हैं। सच पूछिए तो महर्षि वाल्मीकि की रामायण भावभूति के उत्तर रामचरित और शेक्सपियर के ओथेलो आदि की लोकप्रियता का रहस्य उनमें विचित्र करुण रस द्वारा आनंद जनकता में ही निहित है। हाँ, अब आप पूछेंगे कि आनंद जनक करुण रस में फिर प्रेक्षक लोग क्यों रोते हैं और क्यों आंसू टपकाते हैं? इसलिए उत्तर में वे निवेदन है कि रोना और आंसू टपकाना दुख में ही नहीं सुख में भी होता है। आपका तर्क ही अनैकांतिक है। हम भी पूछते हैं कि वर्षों बाद प्रवास से घर आए हुए पुत्र को गले लगाती हुई ममतामयी माँ की आंखों में आंसुओं की जो झड़ी लग सकती जाती है, वह क्या दुख के कारण लगती है या आनंद के कारण? हमने तो यहाँ तक समाचार सुन रखा है कि एक भाग्यवान के नाम लाखों की लॉटरी निकली तो उसका अतिशय आनंद जब हृदय में न समा सका तो वह फट ही गया, आंसू बहना दूर रहा, मिली हुई सारी द्रव्य राशि धरी ही धरी रह गई। इसी प्रकार चैतन्य प्रभु सदृश भक्त लोगों को भक्ति द्रवित हृदय अश्रु धारा रूप में बाहर बहता हुआ हम भक्ति रस में भी पाते हैं, करुण में ही नहीं। अतः करुण आदि रस काव्य नाटकों में आनंद परक ही होते हैं, दुख परक नहीं। यही काव्य व्यापार की विलक्षणता है। रस गंगाधरकार के शब्दों में अयम ही लोको तरस्य काव्य व्यापारस्य महिमा यत् प्रयोज्या आरमणीय अपि शोकादय पदार्थ आह्लादिकम् अलौकिकम् जयंती विलक्षणो हि कमनीय काव्य व्यापार आस्वाद प्रमाणांतरज्ञाद अनुभवात्। यही बात विश्वनाथ भी कह गए हैं, हेतुत्वं शोक हर्षाद गर्तव्यो लोक संशयात् शोक हर्षादयो लोके जायन्ताम् नाम लौकिकाः अलौकिक विभावत् अलौकिक विभावत्वं प्राप्तेभ्य काव्य संशयात् सुखं संजायते तेभ्य श्रवेभ्यो अपिति का क्षति। रस संख्या और उनका परस्पर संबंध। वैसे आचार्यों ने श्रृंगार हास्य करुण रौद्रवीर भयानक विभत्स और अद्भुत ये आठ रस माने हैं, किंतु बाद में तो शांत रस की भी पृथक सत्ता स्वीकार कर ली है। मम्मट और विश्वनाथ भी शांत रस के समर्थक हैं। श्रृंगार आदि जैसे अपने रति आदि पाठ अस्थाई भाव पर आधारित है, वैसे ही शांत रस का भी सम नामक अपना स्वतंत्र स्थाई भाव है। कई साहित्यिक निर्वेद को शांत का स्थाई भाव मानते हैं। मम्मट ने भी निर्वेद को व्यभिचारी भावों में न गिनकर उसे शांत का स्थाई भाव माना है, किंतु विश्वनाथ सम को अस्थाई भाव और निर्वेद को उसका संचारी भाव मानते हैं। विश्वनाथ निर्वेद में तत्व ज्ञान आदि के कारण स्वावमानन मानते हैं, जबकि सम में निरीहावस्थायाम स्वात्म विश्राम सुखम लेते हैं। विश्वनाथ ने दसवां रस वात्सल्य भी माना है, जिसे वे भरत मुनि सम्मत कहते हैं। इसका स्थाई भाव वे वत्सलता को मानते हैं। कुछ आचार्य स्वतंत्र भक्ति रस भी मानते हैं, किंतु विश्वनाथ ने इसे देवता विषयक रति मानकर भाव के भी अंतर्गत कर दिया है। इसी तरह राजभक्ति, देशभक्ति, गुरु भक्ति, मातृ पितृ भक्ति आदि सब भाव हैं, जो रस नहीं बन सकते। अपने में स्वाद दशा में आनंद स्वरूप होते हुए भी रसों की ग्रहों की परस्पर मित्र भाव और शत्रु भाव ही रहता है। जो रस दूसरे रस की पुष्टि दे वह मित्र रस होता है, अन्यथा शत्रु रस। श्रृंगार को हास्य से बल मिलता है, अतः हास्य श्रृंगार का मिश्र रस है, लेकिन करुण रस श्रृंगार की जड़ ही काट देता है, अतः वह उसका शत्रु रस है। करुण की रस विभत्स रौद्र वीर और भयानक ही श्रृंगार के विरोध रस है। इसी तरह भयानक और करुण हास्य के विरोधी हैं। भयानक और शांत वीर के विरुद्ध है, तो भयानक श्रृंगार वीर रौद्र और हास्य शांत के विरुद्ध है। मूल रस अद्भुत, करुण शांत या श्रृंगार। विश्वनाथ ने रस का विश्लेषण करते हुए उसे लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा है। चमत्कार विस्मय का पर्याय समझिए। विस्मय चित्त विस्तार रूप होता है। राग द्वेष आदि से निर्मुक्त होकर चित्त का अपना पूर्ण सात्विक विकास अपनी संकुचित परिधि से बाहर निकलकर विश्व के साथ एकात्म अपना लेना ही उसका विस्तार है। यही अलौकिक आनंद का रूप भी है। यह चमत्कार सभी रसों के समान रूप में पाया जाता है, इसलिए विश्वनाथ के वृद्ध पर पितामह नारायण अद्भुत को ही मूल रस और शेषों को उसी विस्तार माना है। रसे सारस चमत्कार सर्वनाप्यनुभूयते तच्चमत्कार सारत्वे सर्वशा अद्यंगतो रसः तस्माद् तमे भाव कृहि नारायणो रसम। नारायण का मत उद्धृत करने से दर्पणकार भी अद्भुत को ही मूल रस माने तो प्रतीत होते हैं। करुण रस के प्रसिद्ध चित्तेरे नाटककार भावभूति ने रसों के मूल में मुख्य भाव करुणा मानकर करुण को ही आदि और मूल रस मानते हैं। इन्होंने अपने उत्तर रामचरित्र में इस बात को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया है। एको रस करुण एवं निमित्त भावेद भिन्न पृथक पृथक विश्चायते निवर्तन आवर्त बुद्धे उतरंगमयान विकरान अभ्यो यथा सलिलमेव तु तत्सम्मतम। अर्थात अपने मूल रूप से विद्यमान जल जिस प्रकार विविध कारणों से तरंग बुलबुला हमर और हिम आदि रूप में परिणित हुआ दिखाई देता है, वैसे ही करुण रस भी समझ लीजिए। यह करुण ही है जो निमित्त भेद से श्रृंगार हास्य आदि रूपों को अपनाए रखता है। जो हो सकता है कि भावभूति के इस सिद्धांत के पीछे व्याघ द्वारा मारे गए काम मोहित क्रौंच के योग में तड़पती हुई कौंची के दृश्य से आदि कवि वाल्मीकि के द्रवित हृदय में निम्नलिखित आदि कविता के रूप में वही करुणा हो। मानिसाध प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समां यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम्। धनिकार आनंद वर्धनाचार्य का भी ऐसा ही मत है। काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादि कवेह पुरा क्रौंच द्वंद्वियोगोत्थ शोकः श्लोकतमागतः। अभिनव गुप्त पदाचार्य मूल रस शांत को लेते हैं, कारण कि किसी भी रस के अनुभूति क्षण में हमारा चित्त शांत हुआ रहता है। रजोगुण और तमोगुण की राग द्वेष आदि सभी वृत्तियों में रहित होकर वह जगत के सभी बाह्य पदार्थों से विमुख बना रहता है। यहाँ तक कि उस समय निज देह तक का इस भान नहीं होता रहता है। ऐसी विदेहावस्था शांत की ही है। कहा हुआ भी है, न यत्न दुखम न सुखम न चिंता न द्वेष रागौ न च कश्चिदिच्छा रसः सशान्तः कथितो मुनीन्द्रैः सर्वे सुभावेषु समप्रधानः। इसलिए मूल रस शांत है जिसके विकार अन्य रस है। भोजराज का मत है कि मूल रस करुण आदि नहीं प्रत्युत श्रृंगार है। इसका स्थायी भाव रति है जिसका स्वरूप दर्पणकार के शब्दों में रतिर्मनो अनुकूले अर्थे मनसः प्रवणाति यम, अर्थात अनुकूल अथवा प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति मन का प्रवणायित झुकाव अर्थात लगाव अथवा आसक्ति है। इसी को प्रेम भी कहते हैं। जीवन तथा साहित्य में जितनी व्यापकता प्रेम की है उतना अन्य भावों का नहीं है। यही कारण है कि प्रेम भाव और आधारित श्रृंगार साहित्य से रसराज कहलाता है। यदि मन में लगाव को प्रणयी प्रणिनी तक सीमित न करके उसे व्यापक रूप में लिया जाए तो हमारे विचार से करुण आदि रस इसी के अंतर्गत हो जाते हैं। वाल्मीकि की करुणा के मूल में उनका प्राणी मात्र के प्रति हृदय का लगाव नहीं था। क्या भावभूति के कारण रस में भी तो राम का सीता के प्रति लगाव ही रहा? शांत में मोक्ष के प्रति लगाव है तो भक्ति में परमात्मा के प्रति लगाव है। वत्सल में माता के प्रति, पिता के और अपने बच्चों के लिए लगाव ही रहता है। वीरता में देश अथवा कर्तव्य प्रेम ही परक प्रेरक होता है। हास्य में भी सखा प्रेम काम करता है। प्रणय कूप में श्रृंगार की पुष्टि छिपी रहती है। इस तरह किसी न किसी रूप में सभी रसों में मन का प्रवणायित मिल ही जाता है, जिसमें श्रृंगार को मूल रस मानने में हमारे विचार अनुसार कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रस की रस्यमानता। रस को उपरोक्त 9-10 भाग में विभक्त देखकर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि रस इन तक ही सीमित है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम में रस शब्द रूढ़ नहीं प्रत्युत अपना रसयते अर्थात आस्वाद्यते इति रसः, यह व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ लेकर रसन योग्य रसों के साथ साथ रसाभास भाव भावासाम भावोदय आदि को भी लेकर चलता है। जहाँ भी रस्यमानता अथवा रमन व्यापार हो वह सभी रस कहलाता है। दर्पणकार ने स्वयं स्वीकार किया है, रस भाव तदा भाव भावस्य प्रथमोदयो संधि सबलता चैति सर्वे अपि रसनाद्रसा। नियमानुसार रस को उचित पात्रों में ही दिखना होता है। जहाँ उसमें अनौचित्य आया कि वह रसाभास बन जाता है। उदाहरण के लिए श्रृंगार को ले लीजिए। विवाहित जुगल अथवा भावी पति पत्नी ने रति श्रृंगार रस ही बनाएगी, किंतु प्रेम अथवा व्यभिचार अथवा पशु पक्षी वाली रति श्रृंगार रसाभास हो जाएगी। इसी तरह श्रेष्ठ पुरुषों के साथ हरास या क्रोध तथा नीच में सम रसाभास के ही प्रयोजक बनेंगे, रास्य रौद्र और शांत रस के नहीं। रति आदि स्थायी भाव भी यदि उद्भूत मात्र हो, विभाव आदि पूरी सामग्री में संपन्न न हो तो वे भाव होते हुए भी रमन योग से रस ही कहलाएंगे। इसी तरह अन्य भी समझ लीजिए, आनंद व धन का धन्यवाद। रस काव्य का मुख्य तत्व बनकर चला ही आ रहा था कि इस बीच आचार्य आनंद वर्धन ने काव्य क्षेत्र में पदार्पण किया और काव्यस्यात्मा ध्वनि का डिम डिम पीट कर वे काव्य के लिए एक नया आयाम खोल गए और वह है उनका ध्वनिवाद। ध्वनि में उनका अभिप्राय अनुरणय न्याय से शब्द और अर्थ आदि से प्रतीयमान अथवा अभिव्यंजक अन्य भी वस्तु से है। घड़ियाल पर डंडे से चोट मारने से पहले जोर के हुए स्थूल शब्द के बाद हम देखते हैं कि क्रमशः अनुरणन अर्थात हल्की हल्की और फिर और हल्की आवाजों का सिलसिला कुछ समय तक चलता रहता है। उसी तरह कवि वाणी के छिपी सूक्ष्म सूक्ष्मतर ध्वनि समझिए, इसे प्रतीयमान अथवा व्यंग अर्थ कहते हैं। ध्वनिकार के शब्दों में प्रतीयमानम पुनरन्यदेव वस्तत वस्ती वाणीषु महाकविनाम यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तम् विभक्ति लावण्यमीवांगनासु ब्रैकेट ध्यान लोक ब्रैकेट बंद।
अर्थात जिस प्रकार अंग नामों में मुख नेत्र आदि अवयवों से भिन्न ही कोई लावण्य नामक वस्तु झलकती रहती है, वैसे ही महाकवियों की वाणी में प्रतीयमान अर्थ साधारण शब्दार्थ से भिन्न ही हुआ करती है। इसी ध्यान से आचार्य आनंदवर्धन काव्य का जीवात पाते हैं, किंतु इससे यह न समझ ले कि वे रस को काव्य में अपने उच्च आसन पर गिरा बैठे हों। रस का उन्होंने वही उत्तम स्थान बनाया रखा है और उसे रसध्वनि नाम से पुकारा, लेकिन रसध्वनि के अतिरिक्त वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि को भी वे काव्य क्षेत्र के भीतर लाए हैं। बाद को मम्मट विश्वनाथ आदि साहित्य शास्त्रियों ने भी उनका यह ध्वनिवाद बनाकर सचमुच में स्वीकार कर लिया। विश्वनाथ वाच्यातिशयिने व्यंगे ध्वनिस्तत काव्यशतम उत्तम, अर्थात व्यंग्यार्थ यदि वाच्यार्थ को पिछाड़ दे तो इसमें अधिक चमत्कार हो तो वह उत्तम काव्य होगा, कहकर ध्वनि वाले काव्य को उत्तम काव्य की चोटी में ले गए। और एक तरफ से रस ध्वनि से अतिरिक्त ध्वनि स्थलों में भी उत्तम काव्यता माने गए है, किंतु जहाँ व्यंग गुणीभूत हो जाए अर्थात वाच्य की अपेक्षा हीन रहे उसे उत्तम काव्य न मानकर उन्होंने गुणीभूत व्यंग काव्य कहा है। गुणीभूत व्यंग का उदाहरण लीजिए, वानेर कुंजं अनगंग शूकनिकुलं कोलाहलं किं श्रवणत्याम गृहकर्म व्यापतया वद्वाह सिदयन्तयंगानि। यह ध्वनि से निकलकर यह निकल रही है कि संकेत स्थान में वह पहुंच गया है, किंतु वधु के अंग अंग बैठे जा रहे हैं। यह वाच्यार्थ अधिक चमत्कारक है। दर्पणकार ने ध्वनि के मुख्य भेद दो गिनाए हैं, अभिधा मूलक और लक्षणा मूलक, जिन्हें उन्होंने क्रमशः विवक्षितान्य परक वाच्य और अविवक्षिताच्य परवाच्य भी कहा है। लक्षणा मूलक के केवल दो ही भेद बताकर अभिधा मूलक ध्वनि पर बड़ा विस्तार किया है और हजारों तक ही संख्या में ले गए हैं। रस और भाव आदि को इन्होंने असंलक्ष क्रम व्यंग ध्वनि कहा है, क्योंकि इनका आस्वाद समूहात्मक होता है, इसलिए इसके घटकों का क्रम होते हुए भी सूक्ष्म होने के कारण वह उत्पलसत पत्रव्यति भेदवत परिलक्षित नहीं होता। ध्यान रहे कि उक्त सभी ध्वनिया व्यंग अर्थात व्यंजना शक्ति बोध ही होती है, अभिधा और लक्षणा की इनमें कोई गति नहीं। व्यंजना को पृथक न मानने वाले न्यायिकों ने इसका बड़ा विरोध किया। वे अभिधा और लक्षणा दो ही शब्द शक्तियां मानते हैं। उनके अनुरस रसादि आदि व्यंग्यार्थ अनुमान द्वारा ही जाने जा सकते हैं। उनका खंडन करने में ग्रंथकार साहित्य दर्पण का पांचवा परिच्छेद साधारण छात्र हेतु वसन टेक्निकल क्लिष्ट बन गया है। पहले उसने बड़े पुष्ट और प्रबल तर्कों से अनेक उदाहरण देकर व्यंग्यार्थ की वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से सुतराम भिन्नता सिद्ध की है। फिर रस वस्तु और अलंकार ध्वनि में नैयायिकों की एक करके सभी अनुमान प्रक्रियाओं का निराकरण किया है। उदाहरणार्थ रस संबंध में नैयायिकों की अनुमान प्रक्रिया लीजिए, नाटक दृष्टारह काव्याध्येतारो वा रस प्रतीतिमंतः विभावादि प्रतीतिमवत्वात् यत्र यत्र विभावादि प्रतीतिः तत्र तत्र रस प्रतीतिः देवदत्तादिवत्। किंतु दर्पणकार के अनुसार विभावादि प्रतिमित्वात् यह हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि काष्ठकुण्ड्यामनसन्निभः जनरनैयायिकः आदि को विभावादि प्रतीति होती है, किंतु उनमें रस प्रतीति नहीं होती, इसलिए यह हेतु अनेकांतिक हेत्वाभास बन जाता है जो साध्य को सिद्ध कर नहीं कर पाता है। इसी तरह वस्तु और अलंकार ध्वनियों में भी नैयायिकों के सभी अनुपमापक हेतु पर्वत धूमान वह निमत्वात महान शवत की तरह व्यभिचरित हो जाते हैं। अतएव व्यंग्यार्थ बोध कराने वाली वृत्तियां व्यंजना है, सा च एवं व्यंजनानाम वृत्तिरयुच्यते बुद्धैः रसव्यक्त पुनर्वृत्तिम रसनाख्याः परे विदुः काव्यभेद दृश्यः
रसात्मकम वाक्य काव्य के दर्पणकार ने कितने ही भेद बताए हैं जिनको हम दृश्य और श्रव्य के भीतर अंतर्गत करेंगे। चक्षु से ग्रहण किए जाने वाले काव्य दृश्य कहलाते हैं, जबकि श्रोतेन्द्रिय ग्राह्य अथवा अधितव्य काव्य श्रव्य होते हैं। दृश्य को हम रंगमंच पर अभिनीत हुआ देखते हैं। जन असाधारण आजकल दृश्य को नाटक नाम से पुकारता है, लेकिन बात ऐसा नहीं है। दर्पणकार ने दृश्य को रूपक कहा है और उनको व्युत्पत्ति तद्रुपात तु रूपकम अर्थात इसमें मूल पात्र दुष्यंत शकुंतला आदि का आरोप अथवा तादात्म्य किया जाता है, जैसे कि सुख आदि पर चंद्र आदि का आरोप होता जाता है। नाटक तो रूप का भेद विशेष है जिसको कथा वस्तु इतिहास पर आधारित कर रहती है, जबकि अन्यों को नहीं। दृश्य को ही अभिनय की तरह दृश्यम तत्र अभिनेयम, क्योंकि इसमें अभिनय होता है, जिसका स्वरूप और विभाजन दर्पणकार ने इस प्रकार किया है। भवेद भिन्नो व्यवस्थाकार अनुकार स चतुर्विध अंगिको वाचकश्चैव महार्यम सात्विकस्तथा। मूल पात्रों की अवस्थाओं का अनुकरण अभिनय कहा जाता है। यदि इस शब्द की तदुत्पत्ति व्युत्पत्ति जानना चाहे तो भरत मुनि को देखिए। अभिपूर्वस्तु चिणयच्च धातुराभित्य मुखार्थ निर्णय यस्मात् पदार्थान नयति तस्माद् अभिनय स्मृतः। अर्थात अभी हमारे आगे नयति ले आता है, उक्त अभिनय अथवा अनुकरण आंगिक वाचिक आहार्य और सात्विक चार प्रकार का होता है। आंगिक के मूल पात्रों के मुख आँख हाथ पैर कमर आदि की तादात्म्य रूप से की जाने वाली क्रियाओं की यथावत अनुकृति पाती है। याचिक के वाणी गीत आदि का अभिनय आता है। आहार्य के भीतर वेशभूषा आदि आती है और सात्विक में आठ सात्विक भाव स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभंग प्रकंप चेहरा पीड़ा पड़ जाना आंसू बहाना और सुख अथवा दुख में शारीरिक चेष्टा और ज्ञान के शून्यता की गिनती होती है। किसी की कलाकार के अभिनय कुशलता उक्त सात्विक भावों के सफल अभिनय से ही आकी जाती है। अब हम कह आए हैं कि टेक्निक की दृष्टि से नाटक रूपक का पर्याय नहीं हो सकते। हाँ, नाट्य पर्याय अवश्य हो जाता है, क्योंकि सभी रूपक नाटित होते हैं। दर्पणकार ने रूपक के दशा और उप रूपक के 18 प्रकार बताए हैं। पश्चिम पक्षपाती भारतीयों की यूं ही भ्रम हो रखा है कि हिंदी साहित्य में अधुनातन एकांकी तत्व पश्चिम से आयातित साहित्य की देन है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि दर्पणकार के अनुसार संस्कृत के रूपक और उपरूपक के उक्त प्रकारों में बहुत से एकांकी ही है। भास के नाटक चक्र में भी अधिकतर एकांकी ही मिलेंगे और इस तरह एकांकी शुद्ध भारतीय उपज है। कुछ पाश्चात्य समीक्षक किसी नाटक की सफलता के लिए अनविति व्यय का होना आवश्यक मानते हैं। वे है स्थान अनविति काल अनविति और क्रिया अनविति। दूसरे शब्द में नाटक का घटना चक्र ऐसा होना चाहिए कि जो एक ही स्थान एक ही समय और एक ही क्रिया अथवा एक से कार्य संबंध रखता हो, किंतु भारतीय नाट्य संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। स्थान के संबंध में शकुंतला नाटक ही देखें तो घटना चक्र कभी हस्तिनापुर कभी कड़वाश्रम और कभी हेमकूट पर्वत पर बिखरा पड़ा है। यही बात काल के संबंध में भी है। वर्षों बाद दुष्यंत मारीच आश्रम में शकुंतला और अपने बच्चे भरत से मिलते हैं, किंतु हाँ काल भंग के विषय में हमारे नाट्य शास्त्रियों ने कुछ नियम अवश्य बनाए हैं। वर्षों का लंबा काल व्यवधान प्रेक्षकों में वैरस्य या रुचि भंग पैदा न कर दे, इसलिए काल की इस खाई को पाटने हेतु दर्पणकार के शब्दों में याच स्याद वर्ष पर्यंत कथा बिना द्विजा अन्याच विस्तरा सुच्या सायर्थोपक्षेप कबुदई विस्कंभक प्रवेशक आदि पर्योपक्षेपकों का प्रयोग करके प्रेक्षकों को सूचना दे देनी चाहिए। जहाँ तक क्रिया यन्विति का प्रश्न है, वह तो सभी को मान्य है। नाटक की सभी घटनाएं ऐसी होनी चाहिए जो कार्य व्यापार को अग्रसर कर रही हो। पताका प्रकरी आदि सभी प्रासंगिकों वस्तुओं की आधारित वस्तु से पूरी पूरी अन्विति आवश्यक है। उन सब की प्रयोजनीयता कथा वस्तु को कार्य के चरम बिंदु तक पहुंचाने में रहती है। कार्य का स्वरूप दर्पणकार ने इस प्रकार बताया है, अपेक्षितुम तु यत्साध्यम आरंभो यन्निसंबंधः समापनम तु यत्सिद्धये तत्कार्यम इति सम्मतम। कहना न होगा कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में जहाँ जीवन के हरेक क्षेत्र में क्रांति ला दी गई है, वहाँ कला क्षेत्र को भी अछूता नहीं छोड़ा है। भरत मुनि और नाट्य शास्त्रों के रंगमंच का काम अब अधिकतर सिनेमा के प्रदर्शक पटों ने ले लिया है। अब रंगमंचीय जाते जीते जागते प्रत्यक्ष अभिनेता अभिनेत्रियाँ चित्रमय बन गए हैं। सिनेमा और दूरदर्शन यंत्रों ने नाटकों का दृश्य रूप तो यथावत कायम रखा हुआ है, लेकिन रेडियो ने उनका दृश्य रूप एकदम समाप्त कर दिया है। नाटक अब ध्वनि रूपकों में बदलकर दृश्य काव्य की जाति से हट गए और श्रव्य काव्य की जाति में मिला लिए गए। काव्य श्रव्य विश्वनाथ कविराज ने काव्य के दृश्य रूप में संबंध में तो विस्तृत विवरण दिया है, किंतु उसके श्रव्य रूप से संबंध में वे संक्षेप अपना बैठे हैं। रचना शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य में उन्होंने तीन भेद किए हैं, पद्य गद्य और पद्य गद्योभय। पद्य वर्ण मात्रा यति गति आदि के नियमों से बंधा रहता है और छंदोबद्ध होता है, जबकि गद्य में ऐसा कोई बंधन नहीं रहता, वह स्वतंत्र होता है। पद महाकाव्य खंड काव्य और मुक्तक इन तीन रूपों में चलता है और गद्य के कथा तथा आख्यायिका ये दो ही भेद होते हैं। महाकाव्य काव्य के साथ महान विशेषण जोड़ने से पता चल ही जाता है कि इसका कलेवर बड़ा होता है या सर्गों में चलता है, जो न बहुत बड़े और न बहुत छोटे होते हैं और एक ही छंद में चलते हैं, सिवाय इसके कि सर्ग के अंत में कुछ पद्यों का छंद बदल देना पड़ता है। इसमें कथानायक कोई देवता या कोई कुलीन क्षत्रिय अथवा एक वंशीय बहुत से राजा भी बन सकते हैं। अंगी श्रृंगार रस और शांत इन तीनों में से कोई एक रहता है। बीच बीच में युद्ध अभियान विवाह प्रातः संध्या रात्रि वन पर्वत आदि विकृत तत्वों का भी चित्रण चलता रहता है। दूसरे शब्दों में महाकाव्य इतिवृत्तात्मक प्रबंध काव्य होता है, इसे हम विषय प्रधान वर्णात्मक काव्य भी कह सकते हैं। इसमें कवि का भीतरी कलाकार बहिर्मुख होकर जगत में विचरता है और उसके साथ अपना रागात्मक संबंध स्थापित करके किसी देश समाज उसकी संस्कृति अथवा उसके किसी महापुरुष के जीवन को मुखारित कर देता है। इसमें इतिहास और पुराण का योगदान बड़ा रहता है। वाल्मीकि की रामायण कालिदास का रघुवंश और कुमार संभव भारवी का किरदार जुनियम माघ का शिशुपाल बद्ध श्री हर्ष का नैषधीय चरित्र और स्वयं विश्वनाथ का राघव विलास ये सब महाकाव्य के भीतर आते हैं। खंड काव्य इस काव्य के साथ भी खंड विशेष होने से यह सिद्ध हो जाता है कि यह कलेवर में छोटा और इसके साथ साथ इसके महाकाव्य की तरह मानवता की समूचा चित्र न होकर उसका खंड चित्र ही मिलता है, जिसे हम काव्य के एक देश कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि महाकाव्य जहाँ एक उद्यान है, वहाँ खंड काव्य उस उद्यान के फूलों की एक क्यारी है। इसलिए दर्पणकार ने खंड काव्य का स्वरूप इस तरह बताया है, खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एकदेशानुसारि च। हम पीछे देखाए हैं कि महाकाव्य विषय प्रधान होता है, जबकि खंड काव्य विषय प्रधान विषय ज्ञान व भाव को कहते हैं। इसमें कलाकार काव्य महाकाव्य की तरह बहिर्मुख न होकर अंतर्मुख बन जाता है, अथवा यूं समझ लीजिए कि वह वाद्य जगत को छोड़कर अंतर जगत में बैठ जाता है और इस तरह उसका काव्य व्यक्ति परक अथवा आत्म परक हो जाता है, विश्व परक नहीं रहता। उसमें मानव जीवन के किसी एक ही मनोवेग अथवा भाव की अभिव्यक्ति रहती है, जो अपने में व्यक्तिगत होता हुआ भी विश्व मानव की अनुभूति बन जाता है। ऐसे भाव प्रधान काव्य की परिणित हमेशा हम देखते हैं कि प्रायः वेदना या करुणा में होती है। उदाहरण के लिए कालिदास का खंड काव्य मेघदूत ले लीजिए, जिसके प्रत्येक श्लोक में श्लोक के शब्द शब्द और अक्षर अक्षर में यक्ष युगल के माध्यम से विरह व्यथित मानव हृदय की गहरी आह और सूक्ष्म धड़कन तक सुनाई देती है। जयशंकर प्रसाद के आंसू का एक या भी यही हाल है। इसी खंड काव्य को हम गीति काव्य भी कहते हैं। मुक्तक, मुक्तक वह पद्य रचना होती है जो पूर्वापर संबंध रखे बिना अपने में स्वतंत्र रहती है। संबंध काव्यों में तो विभावादी सामग्री के आगे पीछे बिखरी रहने के कारण रस योजना पर सापेक्ष रहती है, किंतु मुक्तक में ऐसी कोई बात नहीं। वह तो सब कुछ अपने में समेटे हुए एक स्वतंत्र रस भरी कलसी होती है। मुक्तक का ही दूसरा नाम सुक्ति है। संस्कृत साहित्य में मुक्तक रचनाओं की बड़ा भारी भंडार है। अमरु कवि का शतक, भर्तृहरि के श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक बड़े प्रसिद्ध हैं। सुभाषित रत्ना भंडारगार आदि जैसे कितने ही सुक्ति ग्रंथ संग्रह भी मिलते हैं। गद्य पद्य, गद्य पद्योभय। गद्य काव्य के दो रूप होते हैं, कथा और आख्यायिका। इनमें इतना भी भेद है कि कथा की वस्तु कवि कल्पना प्रस्तुत होती है और इसमें कहीं कहीं आर्य आदि छंद भी रहते हैं। इसे हम उपन्यास भी कह सकते हैं, किंतु आख्यायिका की कथा वस्तु ऐतिहासिक होती है। इसमें कथांशों का विभाग उपश्वासों में होता है, जिनके आरंभ में अनियोक्ति द्वारा आर्य आदि छंदों में भविष्यकालीन बात का पूर्वाभास दिया जाता है। कादम्बरी संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध कथा अथवा उपन्यास है। हर्ष चैत, शिवराज विजय आदि आख्यायिका काव्य है। इन्हें काव्यमय जीवनियां भी कह सकते हैं। गद्य पद्योभय रचना को चंपू कहते हैं, जैसे नल चंपू, रामायण चंपू, देशराज चरितम इत्यादि प्राचीन शिलालेख भी चंपू शैली में आते हैं। रसापकर्षक दोष, पीछे बताया जा चुका है कि काव्य की आत्मा रस में रहती है। यदि कोई वस्तु ऐसी आ जाए जो इसमें अपकर्ष अथवा बिगाड़ पैदा कर दे तो वह दोष कोटि में आ जाएगी। रस में अपकर्ष कई प्रकारों आ जाया करती है, जैसे रसास्वाद में कोई रुकावट पड़ जाना, रसास्वाद में किसी विलंब कारण का आ जाना, रस की उत्कृष्टता के विधातक की उपस्थिति, रस और व्यभिचारी भावादि का शब्द से अभिधान, रसों में परस्पर टक्कर आदि। इनका विस्तार से विवरण विश्वनाथ ने इस तरह दिया है। रस्योक्ति ही स्वशब्देन स्वाय संचारिणोरपि परिपंथिन रस्यांगस्य विभावाद परिग्रह आक्षेपः कल्पितः कक्षादन अनुभाव विभावयुः अकांडेः प्रथमाक्षेदौ तथा दीप्तिः पुनः पुनः अंगिनो ननु अनुसंधानमंगस्य च कीर्तनम् अति विस्तृत अतिरंगस्य प्रकृतिनाम विपर्ययः अर्थान औचित्यं मन्यच्च दोषारसगतामतः। प्रश्न उठता है कि दर्पणकार के किए दोष लक्षण के अनुसार काव्य के दोष क्या यही है जो ऊपर गिनाए गए हैं? फिर तो उन्होंने इनके अतिरिक्त जो शब्दगत, अर्थगत और अलंकारगत कितने ही अन्य दोष गिना रहे हैं। उनकी दोषता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका रस से संबंध नहीं है, शब्दार्थ से संबंध है। हमारे विचार में इस संबंध में मम्मटाचार्य ही ठीक रहे, जिन्होंने काव्य का लक्षण करते हुए अदोष शब्दार्थ कहा है। उसके अनुसार दोष शब्दगत और अर्थगत भी होते हैं। शब्द से अभिप्रेत यहाँ पदगत, पदांशगत और वाक्यगत दोष भी है। मालूम होता है कि दोषों को शब्दार्थगत भी मानने में दर्पणकार मम्मट के अनुकरण पर चले हैं, अथवा इसका हमारे विचार में स्वतंत्र समाधान भी हो सकता है। और वह ही दर्पणकार की अलंकारों के संबंध में कहीं निम्नलिखित उक्ति शब्दार्थयो रस्थिताये धर्माः शोभाति साइनः रसादिनम् उपकुर्वन्तो अलंकाराः, अर्थात शब्द अलंकार शब्दार्थ रूप काव्य शरीर की शोभा बढ़ाते हुए शोभित शरीर के माध्यम से शारीरिक काव्य भूत रस की भी शोभा बढ़ा देते हैं। यहाँ अलंकार का रस के साथ परंपरा संबंध जोड़ा गया है। यही बात शब्दार्थगत दोषों के संबंध में भी कही जा सकती है। रसगत दोषों का रस का अपकर्ष अथवा बिगाड़ करने में तो रसाक्षात संबंध अर्थात सीधा हाथ रहता है, किंतु दोष पर शब्दार्थगत होते हैं तो काव्य शरीर को बिगाड़ कर वे बिगड़े हुए काव्य शरीर के माध्यम से शारीरिक रस को भी बिगाड़ देते हैं। इस तरह दोषों का रस के साथ दो प्रकार का संबंध साक्षात और परंपरा सिद्ध होता है। अतः रसापकर्ष का दोषा लक्षणा के अपकर्ष दोनों संबंधों से समझना चाहिए, एक ही संबंध से नहीं। लोक में भी देख सकते हैं कि कोई सुंदर लड़की शरीरतः कानी हो अथवा लंगड़ाती हो तो उसे उसका यह शरीर गत दोष स्वयं उसे उसके व्यक्तित्व को नव युवकों की निगाह में गिरा देता है। तरह दोषों से काव्य ही नहीं बल्कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की उपादेयता घट जाती है। दोषों के संबंध में एक बात और हम देखते हैं कि कवि वाणी में कितनी ही बातें ऐसी भी मिलती है जो विधाता के जगत में होती ही नहीं है, कितनी ही तो असंभव और बिल्कुल असंगत दिखाई देती है। एक दो उदाहरण लीजिए। कवि लोग हास और यश को सफेद कहते हैं। भोजराज का यश गान करता हुआ कोई कवि कहता है, महाराज आपके यश के सारे जगत में सफेद हो जाने पर महादेव का पता ही नहीं चल जाता कि कैलाश कहाँ है और इंद्र भी अपने ऐरावत को ढूंढ नहीं पा रहा है। भला यश कोई इतनी व्यापक चुने किसी सफेदी होती है। धनु अनुराग को कभी लोगों ने लाल रंग का कहा है, क्या अनुराग फूल की तरह कोई मूर्त वस्तु है जो लाल हो, यह तो निरूप भाव है। इसी तरह कवियों का कहना है कि चकोर पक्षी चांदनी को पीता है, क्या चांदनी कोई पानी है जो वह उसे पी जाए। ऐसी ऐसी अनर्गल अब अटपटी और विसंगति पूर्ण कला की बातें काव्य में दोष नहीं बनेगी, इनसे क्या रस का अपकर्ष नहीं होगा। प्रश्न तो ठीक किया है किंतु प्रश्नकर्ता को कवि जगत की विशेषताओं का पूरा पूरा पता नहीं है। हम पीछे बता आए हैं कि पहले कवि जगत का रस तत्व ही लीजिए कि वह किस तरह विलक्षण और अलौकिक होता है। मम्मट के शब्द में कवि भारती नवरस रुचिरा अहला वैद मई नन्य परतंत्रा होती है, वह कल्पना लोक में विचरा करती है। उसने वैदिक ऋषि के मुख से उषा का ऐसा दिवोदुहिता प्रत्यदर्शिता जेव ज्योतिर्वासना श्यामना पुरस्तात् ऋतस्य पन्या मन्वेति साधु प्रजानति वन दिशो मिनाति। इस तरह जो दुहिता के रूप में तथा जयशंकर प्रसाद के मुख से घूंघट खोल उषा ने झांका और फिर अरुणा पांगों से देखा कुछ हंस पड़ी लगी टहलने प्राची के प्रांगण में तभी। इस तरह नारी के रूप में चित्र खींच रहे हैं, ये कल्पनाएं ही तो हैं, ये भी अटपटी और अनहोनी नहीं है क्या। इस तरह कवि भारती में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें होती है जो भले ही लोक और शास्त्र की दृष्टि से विपरीत लगती हो वह देखने में असंभव सत्य और अटपटी होती है, किंतु अनादिकाल में चली आ रही उनकी अपनी एक स्वस्थ परंपरा है जो कवि जगत में छाई रहती है। इसी की कवि समय कवि ख्याति अथवा कवि प्रसिद्धि भी कहते हैं। गीताकार ने सत्व को सफेद, रज को लाल और तम को काला कहा है, वह अजामेकामलोहित शुक्ल कृष्णाम इस वैदिक आधार पर ही कहा है। इसी तरह पाप काला और पुण्य सफेद होता है। दर्पणकार ने मालिन्यम व्योमनि पापे यशसी धवलता से लेकर इत्याधुने मन्यत कविशं समयगतम सक्त कवीनाम प्रबंधे तब बड़े विस्तार के साथ कवि जगत की इन सारी विशेषताओं का अभिधान कर रखा है। इस संबंध में वे दृष्टव्य हैं, किंतु ध्यान रहे कि कवि कल्पना अथवा कविमय के पीछे भी कुछ न कुछ आधार अवश्य रहता है। उदाहरणार्थ ह्रास की सफेदी को लीजिए, हमारे विचार से इसका आधार हंसते समय स्वच्छ दंत पक्तियों से बाहर निकल रही निर्मल धवल दीप्ति सच्छटा हो सकती है, इसलिए लोक और शास्त्र विरुद्ध अथवा असंगत लग रही है। कोई बात यदि ख्याति के अनुकूल हो अथवा उसमें पाई जाती हो तो वह दोषाधायक नहीं हो बन सकती बल्कि गुण कोटि में आ जाती है, किंतु हाँ यदि वह लोक और कवि स्वयं समय दोनों के विरुद्ध हो जाती है तो अवश्य दोष बन जाती है। उदाहरण के लिए नैषद काव्य में श्रीहर्ष की यह उक्ति देखिए, अमोची चुपुट्टो मौन मुद्रा विहाशयाय तेन विहस्य भूयः। अनुप्रास के प्रवाह में बहकर कवि हंस में हंसी बता रहा है, लेकिन प्राणी जगत से मनुष्य को छोड़कर किसी भी अन्य जीव में हंसी नहीं पाई गई है, न ही पक्षियों के हंसने की कोई ख्याति ही है, नहीं इसलिए वह अवश्य विकृत विरुद्धता दोष के भीतर आ जाता है। यदि कहो कि जिस तरह देवास्तव देवत्वांश होने के कारण हस प्रकृति विरुद्ध मनुष्य वाणी बोल जा सकता है, वैसे ही विरुद्ध प्रकृति मनुष्यों को हंसी भी हंस सकता है, तो बात दूसरी है। लेकिन पक्षियों के मुख पर निश्रय हंसी झलकती ही नहीं, मानुषी वाणी बेशक मुंह से निकल जाए। रसोत्कर्ष गुण रसस्यांगित्वम् आप्तस्य धर्माः शौर्यादयो गुणाः, अर्थात जिस तरह मनुष्य के शरीर के भीतर रहने वाले शरीरी आत्मा में शौर्य औदार्य आदि गुण उसके उत्कर्ष को बढ़ाते हैं, उसे उत्कृष्ट मनुष्य बना देते हैं, वैसे ही काव्य के शरीर भूत शब्दार्थ के भीतर रहने वाले शरीर अंगी अथवा शरीरी अथवा आत्मा में भी ऐसे गुण हुआ करता है जो उसे उत्कर्ष प्रदान करता है। रस और गुण का परस्पर समवाय संबंध रहता है, अलंकारों की तरह संयोग संबंध नहीं। फिर भी किसी मनुष्य के शरीर संगठन को देखकर हमें उसके सुरवीर होने का ज्ञान हो ही जाता है। यही बात गुण और रस में भी समझ लें। काव्य की पद रचना को देखकर रस की गुणों की प्रतीति हो जाया करती है, लेकिन जैसे वीरता आदि गुण आत्मा के होते हैं शरीर के नहीं, वैसे ही काव्य में काव्य गुण भी रस के धर्म है, पद रचना के नहीं। इसे परंपरा या अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंध कहे तो कह लीजिए, रस के गुण तीन होते हैं और वे हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य दर्पणकार के शब्दों में चित्त द्रवी भाव लाद को कहते हैं। ध्यान रहे कि रसानुभूति क्षण में चित्त को हम चार अवस्थाओं में पाते हैं, द्रुति, दीप्लत्व, कठिन और विक्षेप। द्रुति चित्त का द्रवी भाव अथवा पिघलाव कहा जाता है, जो स्वत रूपतः आह्लाद या आनंद रूप होता है, यही माधुर्य गुण कहलाता है। यह संभोग श्रृंगार, करुण विप्रलम्ब श्रृंगार और शांत में रहता है, और उनमें भी क्रमशः उत्तरोत्तर में अधिकाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी अभिव्यक्ति के लिए मधुर ललित कोमल भाषा होनी चाहिए, क्योंकि रति करुणा और सम स्वयं कोमल भाव है। मधुर ललित भाषा में अभिप्रेत वह भाषा होती है जिसके बोलने में वाग इंद्रिय को कोई कष्ट या रुकावट न हो, बल्कि जो सहज ही मुंह से निकल जाए, जैसे लाइन क्लियर पर गाड़ी निकला करती है, वैसे शुष्क वस्तु वृक्षस्तिष्ठ यज्ञ वाली टकराती है, भाषा नहीं किंतु निरसतः रुहिर बिलसती पुरतः वाली सीधी भाषा अपेक्षित है। ओज गुण चित्त की दीप्तावस्था होती है, इसका रूप दर्पणकार के शब्दों में चित्त विस्तार है। जिस तरह अग्नि के प्रदीप्त होने से गर्मी उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही ओज चित्त के गर्माहट ला देती है। यह वीर रौद्र और विभत्स में रहता है और उत्तरोत्तर में अधिकाधिक होता जाता है। चित्त में कठिन आ जाने से इसे अभिव्यक्ति देने के लिए भाषा भी कठिन बन जाती है, जिसे ओजस्विनी भाषा कहते हैं। संयुक्त और कठोर टवर्गीय वर्णों का प्रयोग तथा समास भूयस्व इसकी विशेषता होती है। प्रसाद रस का वह गुण होता है जिसमें काव्य के पढ़ते अथवा सुनते ही अर्थ तत्काल चित्त में ऐसा व्याप्त अथवा भाषित हो जाए जैसे सूखी लकड़ी से अग्नि अथवा स्वच्छ जल में पड़ी हुई कोई वस्तु। इसमें पद योजना सरल होती है और भाषा सुबोध या सभी रसों में रहता है, क्योंकि बिना सुबोध भाषा के रसाभिव्यक्ति में विलम्ब हो जाता है। कालिदास की भाषा प्रसाद गुण के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रहे कि दर्पणकार ने चित्त की द्रुत अवस्था में श्रृंगार, करुण अथवा शांत रस गिनाए और दीप्तत्व और कठिन की अवस्थाओं में वीर रौद्र और विभत्स, किंतु अद्भुत भयानक और हास्य रसों के संबंध में उन्होंने चुप्पी साध रखी है। हमारे विषय विचार में से तीनों रस चित्त की विक्षेपावस्था वाले होते हैं। वैसे तो प्राचीन साहित्यिकों ने रसों के गुणों की संख्या 10 बता रही है। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, उदारता, पृथक, पदत्व, अर्थव्यक्ति और कांति। किंतु मम्मट ने इन सबको उक्त माधुर्य, ओज और प्रसाद इन तीनों के भीतर समाहित कर दिया है। विश्वनाथ ने भी इस संबंध में मम्मट का ही अनुसरण किया है। पद संगठना रीति, रीति को दर्पणकार ने अवयव संस्थानवत कहा है, अर्थात जिस प्रकार किसी नारी या नर के अवयव प्रण्यवत अवयवों की स्थिति अथवा रचना यथा स्थान ठीक ठीक रहकर शरीर को सुंदर बताए उसके व्यक्तित्व को चार चांद लगा देती है, वैसे ही काम काव्य के रीति किया करती है। वह पद घटना रूप होती है जिस जिस रस के साथ होने और रहने वाली जिस इस गुण को कलाकार ने अभिव्यक्ति देनी होती है उन्हें अनुकूल की पद रचना किया करता है, जिससे काव्य रस का पूरा पूरा आनंद हो जाए। माधुर्य गुण लीजिए, उसके लिए जैसा कि हम पक्षी पीछे स्पष्ट कर आए हैं माधुर्य पद विन्यास अपेक्षित होता है, इसे वैदर्भी रीति कहते हैं। इसमें कोमल वर्णों के शब्द होते हैं, समास नहीं होते, यदि होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे और सुबोध होते हैं, ऐसा ही विश्वनाथ ने कहा है। माधुर्य व्यंजनक कई वर्ण रचना ललितात्मका अवृतिर अल्पपति प्रवृत्ता वैदर्भी रीतिरिष्यति। यदि वीर या रौद्र रस की अभिव्यंजना अपेक्षित हो तो पद रचना ओजगुण वाली बनेगी। चित्त की गर्माहट की तरह वाक्य के वर्णों की व्यंजना योजना भी गर्माहट उगलने लग जाएगी। शब्दों में समास आडंबर और औदत्य आ जाएंगे, इसे गौड़ी रीति कहते हैं। जैसा विश्वनाथ भी कहते हैं, वो जह प्रकाश कैर वर्णे बंध आडम्बर पुनः समास बहुला गौड़ी। जहाँ वैदर्भी और गौड़ी वाले पद रचनाओं के अतिरिक्त बचे वर्ण हो वहाँ पांच छह पदों का समास हो वह पंचाली रीति कहलाती है। यदि वैदर्भी श्रृंगार आदि के अभिव्यंजक माधुर्य गुण परक और गौड़ी रौद्र आदि के अभिव्यंजक ओज गुण परक हो तो पंचाली को यह हम प्रसाद गुण परक कहेंगे, किंतु पंचाली का रस के साथ क्या संबंध, इस विषय में विश्वनाथ चुप है। प्रसिद्ध गद्य सम्राट वाण ने हर्ष चरित्र में विभिन्न देशों की रचना शैलियों के संबंध में यह लिखा है, श्लेष प्रायम दिप्चेसु प्रतिस्यस्वर्थमात्रकम् उत्प्रेक्षा दक्षिणात्तेषु गौणेष्वक्षरडम्बरम्। उन्होंने उक्त चारों प्रतिपादन प्रकारों के समन्वय करके अपने लिए जो समन्वित शैली चुनी उसे अन्य साहित्यिकों ने पांचाली नाम दिया है। शाब्दार्थयोः समो गुफः पांचालेरितिरिष्यते शीला भट्टाविरा कविवाची वाणोक्तिषु च सायदि। अर्थात पांचाली रीति वह होती है जिसमें शब्दार्थों का सम गुफा रहता है, अथवा दूसरे शब्दों में जहाँ अर्थानुसार शब्द योजना रहती है, अर्थ अथवा भाव यदि विकट हो वह तो वहाँ पद योजना भी विकट रहे, और अर्थ यदि कोमल और मधुर हो तो पद योजना भी कोमल मधुर रहे। इस तरह शब्दों और अर्थों की परस्पर समन्वयात्मक शैली जैसे हम कादंबरी आदि ग्रंथों में पाते हैं पांचाली रीति होती है। इसमें यही सिद्ध होता है कि पांचाली की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती और वैदर्भी और गौड़ी की सम भी ऋणात्मक अथवा समन्वित रूप है। हमारे विचार से वैदर्भी का विदर्भ देश, गौड़ी का गौण देश और पांचाली का पांचाल देश से संबंध रखकर ही उक्ति रीतियों का नामकरण हुआ है, क्योंकि उनकी भाषाओं में वैसी ही विशेषताएं रही होगी। यदि बाद को ये काव्य की शैलियां के रूप में अपनाई गई है। अलंकार, जैसा हम दोष प्रकरण के पीछे स्पष्ट कर आए हैं कि विश्वनाथ अलंकारों को शब्दार्थ की शोभा बढ़ाते हुए रस के उपकरण अथवा उसकी प्रधान व्यंजना में सहायक मानते हैं, इनकी तुलना वे किसी नारी के शरीर पर धारण किए कटक कुंडल आदि वेशभूषा से करते हैं जो नारी के सौंदर्य पर चार चांद लगा देते हैं। अलंकारों का यह स्वरूप बताने से दर्पणकार ने मम्मट के निम्नलिखित अलंकार लक्षण का ही अनुकरण किया है। उपकुर्वन्ति ते सन्तः येयंग द्वारेण जातुचित् हरादिव अलंकारास्ते अनुप्रासो उपमादयः। इसमें यही विदित होता है कि अलंकार काव्य संबंध सौंदर्य के वर्धक बहिरंग साधन है। रस के गुणों की तरह इनकी काव्य में अनिवार्य स्थिति नहीं है, लेकिन दर्पणकार ने कटक कुंडलादिवत कहकर उसकी सांस में अलंकारों के लिए धर्माशोभातिशयिन जो कहा है उससे शंका उठ जा सकती है कि धर्म भी क्या कहीं बहिरंग हुए तो सौंदर्य सौर्यादय इवात्मन की तरह अंतरंग होते हैं। बहिरंग तो साधन ही होते हैं, धर्म नहीं। अग्नि के उष्णत्व तो धर्म को भला कौन बहिरंग कहेगा। दूसरे एक रस और भाव आदि के दूसरे रसादि का अंग बन जाने पर उसे रसवत आदि अलंकार कहने में भी दर्पणकार
कोई आपत्ति नहीं दिखती, क्योंकि अंग भूत रसादि कटक कुंडल की तरह बहिरंग नहीं अंतरंग है। इसी तरह मम्मट ने काव्य निर्मापक तत्वों के शब्दार्थ को अनलंकृति पुनः क्वापि जो कहा है वह भी शंकाजनक बन रहा है। इसका सर्वत्र सालंकारो क्वचित स्फुटालंकार वापि शब्दार्थ काव्यम अर्थ करके उन्होंने सामान्यतः सर्वत्र ही अलंकारों को काव्य प्रधान आवश्यकता स्वीकार कर ली गई है। सौ में एकाध अपवाद उसका उन्होंने अवश्य माना ही है, जिसका उदाहरण वे स्वयं यह कौमार हरह को बता गए हैं। किंतु तत्वतः देखा जाए तो वह भी अलंकार से खाली नहीं है। दर्पणकार ने वहाँ विभावना और विशेषोक्ति का संदेह शंकरालंकार स्पष्ट करके दिखा दिया है। सच्चाई तो यह है कि काव्य सृजन करते समय कुछ अलंकार ऐसे हैं जो कवि के आगे परस्पर होड़ लगाकर स्वतः स्फूर्त होते जाते हैं। उनको लाने के लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। वे अपृथ्यगत्यन निवृत्त होकर रस और सौंदर्य की अभिव्यक्ति के अंग बनकर आते हैं और उसमें पृथक नहीं रहते। अलंकार ध्वनि का भी तो यही रहस्य है, इसलिए आनंद वर्धनाचार्य को कहना पड़ा, अलंकार अंतराणी ही निरूप्यमाणम दुर्घटनाप्यपि रसम समाहितश्चेतसः प्रतिभावतः को कबीर अहम पूर्वी कया परा पतंती तस्मान तेषां बहिरंगत्व रसाभिव्यक्तौ। उदाहरण के लिए पीछे बताई पंडित राज ने कवि भाषा की पक्तियां लिखी है, समस्तस्य लोकस्य चेतः प्रविर्षः गृहीत्वा घटेन्यस्य याति वभाति। इसमें से उत्प्रेक्षा को दो और कह दो कि वह सबका मन हर कर जा रही है। क्या इस जनभाषा में किसी चमत्कार या सौंदर्य की अनुभूति होगी? कालिदास शकुंतला का चित्रण कर रहे हैं, अनाघ्रातम पुष्पम किशलयम मनुलम कुरु हरय रसा रनाविद्वम यत्नम मधु नौमनाश्वम नितरसम अखंड पुण्यानाम फलम इव च तद्रूपघनम न जाने भोक्तारम किमहम समुत उपस्थायितः विधि। यह बहिरंग समझकर रूपक और उत्प्रेक्षा को हटा दीजिए और फिर देखिए कि अनुभूति के लिए दया सौंदर्य बचा रहता है। कालिदास से प्रेरणा कुछ लेकर ही हिंदी के प्रसिद्ध कवि गुरुभक्त सिंह ने भी नूरजहां से नियोदिन यौवन का ऐसा ही और भी अच्छा सौंदर्य चित्र खींचा है। यह मुकुल अभी ही खिलकर मुख खोल अवाक हुआ है, अभी अछूता दामन मधुपोक ने नहीं छुआ है, हृदय पुष्प अनवेगा नहीं किसी ने तोड़ा, श्रृंगार हार करके नहीं गले से छोड़ा, मन मंदिर में सुरुचि बना है, प्रतिभा अभिन भावी यौवन न उठा घटा सा नासा नाचा है नहीं कलापी। इसमें से भी रूपक उपमा और अप्रस्तुत प्रशंसा यदि हम हटा दें तो बताइए कविता क्या रहेगी? सारी अनुभूति समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आगम्य अरूप रूप अध्यात्म परक अनुभूति को अभिव्यक्ति देना चाह रहे एक वैदिक कवि को देखिए किस तरह अप्रस्तुत प्रशंसा की शरण पड़ रहा है। द्वा संपूर्णा स्योजात सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिप्लम स्वादत्यन नश्नन्यो हो अभिचाकशीति।
अर्थात सुमित्रा नंदन पंत के शब्दों में दो पक्षी है सहज सखा संयुक्त निरंतर, दोनों ही बैठे अनादि से उसी वृक्ष पर, एक ले रहा फल का स्वाद प्रतिक्षण बिना असन दूसरा देखता अनंतर लोचन। इस तरह रूपक समासोक्ति अप्रस्तुत प्रशंसा जैसे अलंकार से ही हम अपनी आध्यात्मिक सौंदर्य की अनुभूतियों में नायक नायिका के रूप में श्रृंगार रस का आना बाना बहना कर अभिव्यक्त कर सकते हैं। यदि ये न हो तो इन्हीं के आधार पर जायसी कबीर महादेवी जयशंकर जैसे प्रसिद्ध हिंदी के रहस्यवादी अर्थात निराला पंत आदि छायावादी कवियों के खड़े किए पद्मावत कामायनी जैसे भव्य कला निकेतन एकदम धाराशायी हो जाएंगे। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय जैसे नाटक भी कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए अलंकारों की बहिरंगता मात्र से काम नहीं चलेगा। तभी तो प्रसिद्ध संस्कृत मनीषी डॉक्टर राघवन ने कहा है और ठीक ही कहा है, ऐसे अलंकार बहिरंग नहीं हो सकते हैं। इन अलंकारों की तुलना कटक क्यूरों के नहीं बल्कि उन अलंकारों से करनी होगी जिन्हें भारत के सामान्य अभिनय में नायिकाओं के शरीर में अंतरंग हाव भाव और नामों से अभिहित किया गया है। यदि कुंडल आदि से तुलना करने का आग्रह हो तो हमारे विचार से नायिका के बहिरंग कुंडल से नहीं प्रत्युत कर्ण के सहजात अंतरंग कुंडल से तुलना कीजिए, तभी बात बनेगी। किंतु हमारे कहने का यह अभिप्राय कभी नहीं कि सभी अलंकार अंतरंग है बहिरंग होते ही नहीं। जो प्रयत्न निवृत्त है वह भावोद्रेक भावोद्रेक रागात्मक अनुभूति में सहायक नहीं होते, प्रत्युत भाव पक्ष का गला घोट कर उसे निश्चेतन बना कर अपनी कला नैपुणी बताने के लिए ही बाहर से लाकर लाभ दिए जाते हैं। वे स्पष्टतः बहिरंग ही हैं। कला सारणी के काव्यकारों ने ही तो किया है, उन्होंने मस्तिष्क से काम लिया है हृदय में से नहीं, इसलिए वे काव्य को बिगाड़ गए। आत्मा और रागात्मक तत्वों से रहित काव्य शरीर का विविध अलंकारों से संवारना मुर्दे का श्रृंगार नहीं तो क्या है? अलंकारों का वर्गीकरण। वैसे विश्वनाथ कविराज ने अलंकारों के तीन ही वर्ग बताए हैं, शब्दगत, अर्थगत और शब्दार्थोभयगत। शब्दगत वे होते हैं जो केवल शब्दाश्रित रहते हैं, केवल शब्दों के हटते ही उनकी सत्ता भी मिट जाती है, जैसे अनुप्रास, यमक आदि। इसके ठीक विपरीत अलंकार अर्थालंकारों की सत्ता केवल अर्थ पर आश्रित रहती है, यहाँ अर्थ बदला कि उनकी सत्ता भी गई, जैसे उपमा आदि। शब्दार्थोभयगत तो में दोनों बातें पाई जाती है, जैसे पुनरुक्ता वदाभास श्लेष आदि। उपरोक्त अलंकारों में से अनुभूति की दृष्टि से मुख्यता अथवा महता अलंकारों को ही दी जाती है, किंतु दर्पणकार ने इनका कोई पृथक वर्गीकरण नहीं किया, न ही मम्मट ने किया, यूं ही रख दिया है। लेकिन अन्य आचार्यों ने अर्थालंकारों के 5-6 वर्ग किए हैं, सादृश्य मूलक, विरोध मूलक, श्रृंगार मूलक, न्याय मूलक और गुणार्थ प्रतीति मूलक। नंबर 1, सादृश्य मूलकों का आधार प्रतीत और अप्रकृत अथवा वर्ण अथवा अवर्ण के सदृश की स्थापना करना रहता है, जिसे सादृश्य विधान या अप्रस्तुत योजना भी कहते हैं। प्रस्तुत या प्रकृत के समानांतर अप्रस्तुत की योजना में भावों के मार्मिक अभिव्यक्ति और प्रेषणीयता आ जाती है तथा वे झट हृदयंगम हो जाते हैं। इसमें चमत्कारी प्रभाव के लिए हम पीछे कालिदास द्वारा खींचा शकुंतला का सौंदर्य चित्र देख आए हैं। सदृश्य मूलकों में से सबसे प्रमुख स्थान उपमा का होता है, इसे सदृश्य मूलकों की माँ कहते हैं। हम तो कहेंगे कि नटी की तरह उपमा ही वेश और नाम बदलकर रूपक उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, निर्दर्शन आदि की भूमिकाओं में खेल दिखाती रहती है। जैसे कि अप्य दीक्षित ने कहा है, उपमय शाह शैलुषी संप्राप्त चित भूमिका भेदेन रंजयति काव्य रंगे नृत्यनंति तद्विदाम चेतः। नंबर 2, विरोध मूलकों के सदृश के ठीक विपरीत प्रस्तुत को अप्रस्तुत के प्रतित्व में रखा जाता है, जिससे उनकी दिशा एक दूसरे से विरुद्ध हो जाती है, जैसे विरोधाभास, विषम असंगति, विभावना, विशेषोक्ति आदि। नंबर 3, श्रृंखला मूलकों में यह होता है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं का क्रमिक वर्णन चलता है और ऐसा लगता है कि जैसे वे श्रृंखला से बंधी हो, जैसे एकावली, कारणमाला, माला, दीपक, सार आदि। नंबर 4, न्याय मूलक अलंकारों का न्याय अथवा तर्क अथवा प्रमाण काम करता है, जैसे काव्यलिंग, अनुमान, यथासंख्य, विकल्प, हेतु आदि। नंबर 5, गुणार्थ प्रतीति मूलकों की बात यह है कि इनमें कोई बात व्यंग रूप में छिपाकर रखी जाती है या उनकी बातें कही जाती है, जैसे व्याजोक्ति, सूक्ष्म आदि। दर्पणकार ने उपरोक्त शब्द अर्थ और उभयालंकारों के अतिरिक्त दोषों की तरह कुछ रस और कुछ भाव संबंधी अलंकार भी गिनाए हैं। वे हैं रसवत, प्रिय, ऊर्जस्वी और समाहित। रस की किसी दूसरे रस का अंग बन जाने पर रसवत तथा भाव का अंग बन जाने पर प्रिय होता है। रसाभास और भावाभास के किसी अन्य का अंग होने पर ऊर्जस्वी और भाव प्रशम एवं भाव सबलता के अन्य का अंग बन जाने पर समाहित अलंकार होता है, किंतु इनकी
अलंकारता विचारणीय है। जैसे हम पीछे देख आए हैं, अन्य का रस के प्रति अंग और गुणीभूत बन जाने पर दर्पण कार ने स्वयं वहाँ गुणीभूत व्यंग काव्य माना है, फिर उसकी अलंकारता कैसे रस तो सर्वत्र अलंकार्य ही होता है। विश्वनाथ ने ऐसे गुणीभूत रस के विषय में अपने पितामह के अनुज चंडीदास का मत दिखाया है कि वे इस खंड रस कहते हैं, परंतु रस खंड रूप कहा जाता है, वह तो पूर्ण घनानंद रूप है। और स्वयं विश्वनाथ ने रस को अखंड स्व प्रकाशानंद चिंतमय कह रखा है। कोई इसे संचारी रस नाम से पुकारता है, लेकिन उसने इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं किया है, अतः सब कुछ विवादास्पद ही है। तथापि ध्वनिकार ने यह व्यक्तिगत निर्णय अपना दिया है। प्रधाने अत्र वाक्यार्थे यत्रांग तू रसादयः काव्ये तस्मिन् अलंकारो रसादिरतीत मे मतिः। स्पष्ट है कि विश्वनाथ कवि ने अपने साहित्य दर्पण में न्यूनाधिक रूप से काव्य के सभी अंगों पर प्रकाश डाल गए हैं। निसंदेह इससे उत्कृष्ट काव्य के लक्षण ग्रंथ भी संस्कृत में है, जिनसे अपेक्षाकृत अधिक गंभीरता से और वैज्ञानिक ढंग से काव्य तत्वों का विवेचन हो रखा है तथा जिनको अपना आधार बनाकर ही दर्पण कारण यह ग्रंथ रचा है, किंतु सभी में सभी बातें विवेचित नहीं हुई है। दस रूपक जैसों की दृश्य काव्य की प्रमुखता दी गई है, तो काव्य प्रकाश जैसी में उसे छुआ तक नहीं गया है। दंडी के काव्यादर्श का भी यही हाल है। यह तो विश्वनाथ कविराज ही हैं जो सब कुछ लिख कर गए हैं। दूसरे विषय में गंभीरता और प्रतिपादन प्रकार की सूक्ष्मता के कारण अन्य ग्रंथ कुछ कठिन है। काव्य प्रकाश अथवा रसगंगाधर जैसे साहित्य ग्रंथों को सब नहीं समझ सकते, किंतु तुलनात्मक दृष्टि से साहित्य दर्पण सरल सुबोध है। और यही कारण है कि आज पठन पाठन में जितना इसका प्रचार है उतना अन्यों का नहीं। हम मानते हैं कि उनकी मौलिकता कम ही है, क्योंकि दर्पणकार ने मान्यता में प्रायः अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुकरण किया है, उन्हीं के सब लक्षण शब्दांतर में लिख दिए हैं और उदाहरण तक भी उन्हीं के दिए हैं। तथापि लोकप्रियता में इनका साहित्य दर्पण आज संस्कृत जगत में सबसे आगे है। ऐसी बिरली ही साहित्य परीक्षा होगी जिसमें यह पाठ्य ग्रंथ रूप में नियत न हो। ग्रंथ की समाप्ति पर ग्रंथकार ने जो इसके संबंध में यह भविष्यवाणी की थी, यावत् प्रसन्ने धुनिभाननाथ श्री नारायणस्यांग मलंग करोति तावन् मनः समयंदनम् कवि नाम मेषः प्रबंध प्रथितो वस्तु लोके, वह पूरी तरह सही निकली।